ओम शांति। हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे अभी। हम सब ने देखा पहले दिन कि मेडिटेशन मींस आत्मा की तीनों फैकल्टीज को यूज करना है। आत्मा की तीनों फैकल्टीज कौन सी है? मन संकल्प करेगा, बुद्धि दो काम करती है, एक बुद्धि निर्णय लेती है, दूसरी चीज है बुद्धि विजुअलाइज करती है, है ना? अभी अगर आपसे कहें घर, तो आपको घर दिखाई देगा? सबको दिखाई दे रहा है घर? घर दिखाई देगा? हाँ, ऑफिस बोलेंगे तो ऑफिस दिखाई देगा। तो ये जो देखने का काम है ये बुद्धि करती है, विजुअलाइज। तो मेडिटेशन में हमें इन तीनों फैकल्टीज को यूज करना है, नहीं तो हम क्या कहते हैं, हम बैठे थे करने के लिए लेकिन फिर मन क्या हुआ, इधर उधर चला गया। मन इधर उधर तब जाएगा जब मन और बुद्धि को इकट्ठे नहीं रखेंगे। तो सपोज मन ने थॉट क्रिएट किया घर और बुद्धि ने देखा ऑफिस, तो फिर मन ऑफिस चला जाएगा। तो आप मन घर को याद करने बैठे थे लेकिन आप कहेंगे घर को याद करने बैठे थे, ऑफिस याद आ गया। तो मन उस तरफ जाएगा जो बुद्धि देखेगी, ठीक है? तो अभी हमें तीनों चीजों को यूज करना है। मन थॉट क्रिएट करेगा, रिपीट करें, मन क्या करेगा? संकल्प करेगा। बुद्धि क्या करेगी? उसको देखेगी, विजुअलाइज करेगी। और फिर तीसरी चीज क्या होती है, हम उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, और वो तीसरी फैकल्टी है कि फिर वो संस्कार बन जाता है। अभी अगर आप किसी फैमिली मेंबर को याद करें तो पहले उस रिश्ते को याद करेंगे, फिर वो चेहरा सामने आ जाएगा, और फिर आपका जैसा उनके साथ रिश्ता है वो फीलिंग होने लग जाएगी। अगर किसी के साथ कुछ टक्कर हुई है पिछले हफ्ते, उसका नाम याद करो, चेहरा सामने आ जाएगा और वो इमोशन क्रिएट हो जाएगी। ये तीनों चीजें फटाफट से इकट्ठे होने लगती हैं, और ये तीनों चीजें जब साथ साथ चलती हैं तो इसको मेडिटेशन करते हैं। तो अभी हम छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे कि मेडिटेशन कैसे करने हैं, ठीक है? सीधा होकर बैठें। हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं लेकिन हम मेडिटेशन की छोटी सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। थोड़ा सा आंखों को खुला रखेंगे, बंद रखते हैं तो क्या हो जाता है? बंद रखते हैं तो क्या हो जाता है? नींद आ जाती है। और दूसरी चीज एक और भी है, बंद रखकर फिर सिर्फ कभी कभी कर सकते हैं जब आंखें बंद करके बैठेंगे। तो हम अगर परिवार में किसी को याद करते हैं, अभी याद करो अपने फैमिली मेंबर को, एवरीबडी करो, किसी भी एक फैमिली मेंबर को याद करो, आ गई याद? आंख तो बनने की किसी ने, सबकी आंख खुली हुई है। तो किसी को भी याद करने के लिए आंख बंद नहीं करनी पड़ती है। तो परमात्मा को याद करने के लिए क्यों आंख बंद करनी है? आंख बंद करेंगे तो सिर्फ थोड़ी देर जब बैठेंगे तभी याद कर सकते हैं, और नॉर्मल करेंगे तो जहां हैं, जब भी हैं, ऑफिस में बैठे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, मीटिंग में बैठे हैं, तो भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो एकदम से नहीं होगा शुरू शुरू में, लेकिन अभ्यास वही करना है कि हमें थोड़ा सा आंखों को खुला रखना है। और दूसरी चीज एक और होती है आंखें बंद करने से, कि नींद की कमी होने के कारण नींद आ जाती है। फिर बैठते हैं मेडिटेशन के लिए लेकिन क्या हो जाता है? नींद आ जाती है। और तीसरी चीज आंखें इसलिए खुली रखते हैं कि आंखों द्वारा वाइब्रेशन चारों तरफ फैलता है, हमारी एनर्जी जो क्रिएट होती है वो हमारे नेत्रों में दिखाई देती है। इसलिए कहते हैं ना, आंखों में देखो कितना गुस्सा दिखाई दे रहा है, आंखों में दिखाई देता है, आंखों में कितना प्यार दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ आईज में आती है हमारी वाइब्रेशन। और अगर हम वो आईज को बंद कर लेंगे फिर वो वाइब्रेशन रेडिएट नहीं होगी, इसलिए भी आईज को ओपन रखते हैं। तो करेंगे स्टार्ट, हाँ, छोटा छोटा एक्सरसाइज करेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, जो थॉट आप सुनेंगे आप उसको विजुअलाइज करते जाना, आप उसको अपनी थॉट बनाना और उसको विजुअलाइज करते जाना। अभी हम दो मिनट के लिए हम इस घर चलेंगे जहां से हम अभी आए हैं, जिस जिस शहर से आए हैं, ठीक है, सीधा होकर बैठे। अपने आप को देखें इस कुर्सी से उठते हुए, इस हॉल से बाहर जाते हुए। जितना स्पष्टता से देख सकेंगे ना उतना देखें। हमें रास्ता पता है ना, इस हॉल से हम कैसे उतरते हैं, तो उस रास्ते से उतरें। ज्ञान सरोवर के गेट के बाहर जाते हुए जिस बस या कार में आए थे उसी में पहाड़ी से नीचे उतरते हुए, और जैसे यहां आए थे ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, कार में, उसी में वापस अपने शहर जाते हुए। क्लियर देखना कैसे आए थे, कौन सा रास्ता है। अब अपने घर के सामने आकर पहुंचे हैं, घर के दरवाजे पर आ जाएं। क्लैरिटी से देखें कौन से रंग का दरवाजा है आपका। दरवाजे को खोलकर अंदर चलें। घर में देखें सब ठीक ठाक है। 3 दिन से घर को छोड़कर आए हैं। घर में सभी क्या कर रहे हैं इस समय। किसी एक सदस्य के पास जाकर बैठ जाएं, उनसे बातें करें, उन्हें बताएं यहां क्या अनुभव किया। उनसे पूछें वहां क्या चल रहा है 3 दिन से। घर में एक चक्कर लगा लें, अच्छे से चेक कर लें हर कमरे को। रसोई में चलें, देखें क्या हो रहा है। सुबह की चाय बन रही है या परिवार के लिए नाश्ता बन रहा है, क्या हो रहा है इस समय रसोई में। रसोई में फ्रिज कहाँ पर है, कौन से रंग का है, उसको खोलें। बहुत सारे फल फ्रूट्स पड़े हैं वहां फ्रिज में, देखिए कौन कौन सा पड़ा हुआ है। अब उसमें एक ऑरेंज भी पड़ा है, संतरा पड़ा है, उसको उठा लें। अपनी फेवरेट कुर्सी पर आकर बैठ जाए और उसको खाना शुरू करें। अब सबसे विदाई लेते हुए वापस ज्ञान सरोवर में आ जाएं। इस हॉल में अपनी सीट पर पहुंच जाएं। ओके, हाथ उठाएं, कौन कौन हो के आ पाया घर पे? दिख रहा था ऐसा थोड़ा 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 थोड़ा, किस किस का माइंड पूरे टाइम इसी के साथ था, एक्सरसाइज में कहीं और नहीं गया? हुआ ना कॉन्सेंट्रेशन, उसका एक ही कारण है, जो सोच रहे थे उसको देख रहे थे। ये याद रखना है, अगर कोई भी बिना देखे करने की कोशिश करेगा, मैं परम धाम में बाबा के साथ, फिर याद आएगा अरे अभी तो ये काम बचा था, अभी तो उधर जाना था, फिर कहेंगे नहीं मैं परम धाम में बाबा के साथ, फिर कल उसने ऐसा क्यों बोला, उसको ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए ना, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारी थॉट स्टोर्ड पड़ी होती है ऐसा, और जैसे ही हम कुछ और करते हैं वो वापस। इसीलिए मन और बुद्धि को दोनों को इकट्ठे लेना है, ठीक है? अभी हम फिर से विजुअलाइज करेंगे स्क्रीन पे। हाँ, एक एक विजुअल आप देखना, ये YouTube पे बहुत सारे हैं, इसलिए सिर्फ सिर्फ देखना कि जब हम थॉट क्रिएट करते हैं, मैं भृकुटी के बीच, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा, तो कैसे उसको विजुअलाइज करना है। प्ले करते हैं उसको, तो बॉडी को रिलैक्स करके मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले सोल कॉन्शियसनेस, और ये भृकुटी के बीच मैं ज्योति स्वरूप आत्मा, सिर्फ मेडिटेशन में बैठने के टाइम नहीं करेंगे। कल हमने क्या डिसाइड किया था, कब कब करेंगे? कल क्या प्रैक्टिस किया था, 10 सेकंड के लिए क्या करना है, बीच में हर घंटे में कुछ भी करते हुए 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए भी भृकुटी के बीच मैं आत्मा। अगला वाला चलाएंगे, और फिर जब मैं आत्मा यहाँ अपने आप को विजुअलाइज करके थॉट्स क्रिएट करती हूँ, फिर मुझसे वाइब्रेशन निकलकर चारों तरफ रेडिएट होती है, घर में जाती है, ऑफिस में फैलती है, और ऐसे ही वो वाइब्रेशन पूरे शहर, देश और विश्व में रेडिएट होने लगती है। उसको भी हमें विजुअलाइज करना है कि मुझसे निकलकर प्योरिटी, पावर की एनर्जी पूरे चारों तरफ वाइब्रेट हो रही है जी। प्योरिटी एंड पावर की रेस को आप विजुअलाइज करेंगे, आप अलग अलग कलर दे सकते हैं उनको। तो जब आप मेडिटेशन की बुक्स को देखेंगे, उसमें 7 कलर्स है, 7 क्वालिटीज के लिए, और नहीं तो आपको जो कलर पसंद आए यूज कर लो। चल गया नेक्स्ट वाला, चला क्या, चल रहा थर्ड वाला। अब हम देखेंगे कि आत्मा परम धाम की तरफ चलेगी। तो परम धाम कहाँ है? ऊपर, दिखने में कैसा है, जैसे ये आकाश है वैसे ही वो गोल्डन रेड लाइट है। परमात्मा दिखने में कैसा है? जैसे आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, तो परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट। तो हम अपने आप को विजुअल, जैसे हम अभी ये वाले घर गए थे, तो अभी हम वो वाले घर जाएंगे। जैसे अभी हम इस वाले फैमिली मेंबर से मिले थे, अभी हम जाके परमात्मा से मिलेंगे। इसको एक बार फिर से प्ले करेंगे, ठीक है? तो मैं आत्मा यहां हूं, यहां जब गए थे तो बॉडी को उठा के लेके गए थे साथ में, वहां तो बॉडी का कोई काम नहीं है, तो वहां तो मैं आत्मा ही उड़कर पहुंच जाऊंगी, ठीक है? क्लियर हो रहा है सबको, दिख रहा है? फोर्थ वाला, वो वाला है, इसमें वो वाला आया था कि परमात्मा से वो रेज आ रही थी। थर्ड वाला एक बार प्ले करेंगे। एक बार जब हम परम धाम में जाकर पहुंच जाते हैं, तो हम परम धाम में क्या क्या कर सकते हैं? हम परम धाम में परमात्मा से अपनी बात कर सकते हैं। हम परम धाम में कुछ भी पूछना है तो क्यों हम परम धाम में जाके करेंगे, यहां क्यों नहीं कर सकते? यहां भी कर सकते हैं, लेकिन यहां हम बहुत बॉडी कॉन्शियस और ईगो और वो वाली वाइब्रेशन की दुनिया में हैं, तो वो लाइन की क्लैरिटी और कनेक्शन थोड़ी सी बीच में, और बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है यहां पर, तो उनके घर जाकर एकदम शांति से बैठकर भी बात कर सकते हैं। तो जो बात करनी है वो कर सकते हैं, जो पूछना है वो पूछ सकते हैं, कुछ बताना है वो बता सकते हैं, कुछ भी चीज जो तंग कर रही है वो बोल सकते हैं, खत्म हो जाएगी वो चीज। एक बार किसी को सुना दो तो खत्म हो जाती है ना, बट कोई बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी को नहीं सुना सकते हैं। और धीरे धीरे जब रिश्ता बन जाएगा ना, तो हम किसी को सुनाएंगे नहीं अपनी बात, हम उधर ही सुनाएंगे, सेफ रहता है, सेफ रहता है। और सुनाने से क्या मिलने वाला है, रिटर्न में पावर मिलेगी, पावर मिलेगी ताकि वो बात क्या हो जाए, सॉल्व भी हो जाए, या बात वो मेरे मन चित से फिनिश हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, सिर्फ मैं आत्मा, बाबा, परमात्मा और परमात्मा से शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में भर रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें कैसे पड़ती हैं हमारे ऊपर, तो अगर हम जाके हम अंदर बैठेंगे तो नहीं पड़ रही ना हमारे ऊपर, हमें बाहर जाके बैठना पड़ता है। और फिर कौन से डायरेक्शन में बैठना पड़ेगा, जिस डायरेक्शन में सनराइज है उस डायरेक्शन में, पीठ मोड़ के बैठेंगे तो नहीं होगा। तो फिर हम सन गेजिंग करते हैं कि जाकर बैठकर सूर्य के सामने सूर्य को देखते हैं। उससे क्या होता है, सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ती हैं और सूर्य की लाइट और माइट बॉडी की हर सेल को डिटॉक्सिफाई करके हीलिंग करना शुरू करती है। इसी तरह आत्मा परमात्मा के समीप जाकर बैठती है और परमात्मा की शक्तियों की किरणें आत्मा के कड़े से कड़े संस्कार को बदल देती है। तो ये नेक्स्ट अभ्यास है। एक अभ्यास है यहाँ पॉइंट ऑफ लाइट, दूसरा अभ्यास है परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट, तीसरा है बाबा से वो शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही हैं। तो मुझे शांति चाहिए, तब कहेंगे शांति के सागर परमात्मा से शांति की किरणें मुझ आत्मा में भर रही है। उसको करके उसमें टिक जाओ, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, जितना भी हो उतना उसको भरने दो अपने अंदर। ये इतना सिंपल है लेकिन ये बहुत डीप है। इससे हमारे बहुत कड़े कड़े संस्कार चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम परमात्मा की शक्ति से हीलिंग कर रहे हैं। फिर लास्ट वाला दिखाएंगे, फोर्थ वाला। अब हम क्या कर सकते हैं, जो शक्ति मुझ आत्मा में भरी वहीं परम धाम में हम एक और चीज कर सकते हैं। अगर आपको किसी और को शक्ति देनी है ना, जैसे किसी और के कोई संस्कार चेंज करने में हेल्प करनी है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है उसको पावर देनी है, किसी रिश्ते में कोई गांठ बनी हुई है उसको ठीक करना है, तो आप परम धाम में जाएं, बाबा से शक्ति आप पर भरे, फिर आप उस आत्मा को भी परम धाम में याद करके बुला लो, और फिर हम बाबा से लेकर उनको ऐसे देंगे। तो तीन हो जाएंगे परम धाम में। कौन होंगे तीन, बाबा, मैं आत्मा और दूसरा जिसके साथ हमें वो हीलिंग करनी है, वो कॉन्फ्लिक्ट ठीक करना है। हम ये भी कर सकते हैं कि बाबा, मैं और फिर मैं आत्मा, बाबा से भर के अपने पूरे परिवार को, सबको इकट्ठे बुला लो ऊपर, और फिर बड़ा परिवार के बाबा से मुझ पर, मुझसे विश्व की हर आत्मा पर वो शक्ति पहुंच रही है। इस समय प्रकृति भी बहुत उथल पुथल कर रहे हैं, तो बाबा से मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा से वो शक्ति प्रकृति की पांचों तत्व को प्योरिटी और पावर दे रहे हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों को पवित्रता की शक्ति की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो दूषित वाइब्रेशन है ना, वो वाइब्रेशन वातावरण को भी दूषित करती है। ठीक है, इजी हो गया। एक बार चारों चला दे फिर से, एक के बाद एक बार देख लेंगे फिर से। सबसे पहले ब्रिकुटी के बीच पॉइंट ऑफ लाइट, बॉडी से डिटैच्ड, फिर उसके बाद मुझ आत्मा से निकलती हुई वाइब्रेशन बॉडी को भी रेडिएट। सबसे पहले आप बॉडी में उसको रेडिएट कर सकते हैं, जो यहां एनर्जी है वो पूरी बॉडी में रेडिएट हो रही है। जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स ट्रैप होते हैं ना, सारे क्लीन होते जाएंगे। किसी भी अंग में दर्द है, आप वहां से वो एनर्जी लेके, जैसे अभी इधर दर्द हो रहा है सपोज, तो परमात्मा की शक्ति मुझ पर, मुझसे यहाँ जाकर, यहाँ पे जो ब्लॉकेज है, जहां भी दर्द है मतलब वहां अंदर एक एनर्जी ब्लॉकेज होता है। तो सपोज आप उसको विजुअलाइज कलर को कर लो कोई भी, कि यहाँ की डार्क कलर हो गया है मतलब यहाँ ब्लॉकेज है, फिर आप देखो कि व्हाइट लाइट यहाँ से जाकर यहाँ जा रहे हैं और वो सारे डार्क कलर को क्या करती जा रही है, डिसॉल्व कर रही है, डिसॉल्व कर रही है। अंदर एनर्जी ब्लॉकेज क्लियर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, रिवर्सल ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो तो उसमें हार्ट के ब्लॉकेज को क्लियर करते हैं लाइफस्टाइल से और मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन में विशेष ये करना होता है कि परमात्मा की शक्ति को वो हार्ट के ब्लॉकेज पे फोकस करके उसको क्लियर करना है। और फिर क्या करना है, मैं आत्मा कहाँ जा रही हूँ, परम धाम बाबा के समीप, फिर परमात्मा की शक्तियों की किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रही हैं और फिर वो भर के जिसको देनी है। कभी भी सृष्टि पर कुछ होता है, जैसे अभी युद्ध चल रहा है या कभी कुछ भी ऐसे होता है, उसकी बातों में जाने के बजाय वही बात को बार बार न्यूज में देखकर सुनकर बार बार उसको रिपीट करने से हम उसी दर्द को बढ़ा रहे हैं सृष्टि पर। इससे अच्छा जैसे ही कुछ पता चले एक सेकंड के अंदर बाबा परम धाम बाबा से वो शक्ति ली, उस जगह पर जहां वो हुआ है उस पर वो प्योरिटी और पावर की शक्ति दे, जो आत्माओं के ऊपर वो प्रभाव पड़ा है उनको वो शक्ति दे। सृष्टि पर कुछ भी होगा तो सृष्टि की बातों को मन पे नहीं भरना है, परमात्मा की शक्ति से उस स्थान पर उस व्यक्ति को शक्ति देनी है। तो परिस्थिति की भी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करना है, परिस्थिति को भी हीलिंग एनर्जी देनी है। कर सकते हैं ये इजी हीलिंग एनर्जी। ऑफिस में कुछ हुआ है, किसी के साथ कोई बात हुई है, वो आत्मा को ऊपर बुला लो, उसको शक्ति दे दो, अगले दिन सुबह सब ठीक मिलेगा ऑफिस में जब जाएंगे। ठीक है, अब एक बार करेंगे सभी इकट्ठे बैठकर। चलो सीधा होकर बैठेंगे, स्ट्रेन नहीं करना अपने आप को कभी भी। ये वाला घर जाना थोड़ा आसान होता है क्योंकि 3 दिन पहले आए थे ना इस घर से, 3 दिन पहले आए थे, तो ये वाला घर जाना आसान होता है। वो वाला घर भी बहुत आसान हो जाएगा, रोज जाएंगे ना थोड़े दिन, तो थोड़े दिन के बाद बहुत आसान हो जाएगा। चलो सीधा होकर बैठे, बॉडी को रिलैक्स करें, अटेंशन को लेकर आए भ्रिकुटी के बीच। मैं चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा, वाइट लाइट देखते हैं प्योरिटी, धीरे धीरे देखने का अभ्यास करना है, सिर्फ सोचना नहीं है, सोच क्रिएट की साथ में उसको विजुअलाइज करना है। सेंटर ऑफ द फोरहेड भ्रिकुटी के बीच मैं व्हाइट कलर का पॉइंट ऑफ लाइट, मुझसे ये प्योरिटी की वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रही है, इस पूरे हॉल में रेडिएट हो रही है, देखते जाना है एनर्जी मुझसे निकलकर इस पूरे हॉल में मुझसे निकलकर ये वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैल रही है। अब मैं आत्मा कुछ क्षणों के लिए अपने घर मुक्ति धाम परम धाम अपने परमात्मा से मिलने, मीठे बाबा से मिलने, देखे अपने आप को आत्मा चांद सितारों को क्रॉस करते हुए, एक गोल्डन लाइट कलर का आकाश तत्व है, परम धाम जहां से मैं आत्मा इस सृष्टि पर आई थी, ये मेरा घर है। जैसे आकाश में सितारे दिखाई देते हैं, ऐसे ही परम धाम में आत्मा सितारे है। अब मेरे सामने बहुत पावरफुल ब्राइट लाइट चमकता हुआ सितारा, मेरी ही तरह पॉइंट ऑफ लाइट है, लेकिन सर्वशक्तिवान है। मैं पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा पवित्रता के सागर है। देखे उनको अपने सम्मुख, उनकी किरणें और लाइट चारों तरफ रेडिएट कर रहे हैं। हम प्यार से उनको बाबा कहते हैं। हमारे पेरेंट हैं, मन में कोई भी बात है तो बाबा को सुनाएं। कोई बोझ है बताएं, कोई ऐसा घाव है उनको सुनाएं। कोई निर्णय लेना है, कोई प्रश्न है सौंप दे और कह दे ये आंसर आपको ही मुझे देना है। परमात्मा से सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में भर रही हैं। देखिए उन किरणों को अपने अंदर भरते हुए। मेरे घाव, मेरे कड़े संस्कार, अनेक जन्मों के संस्कार, परिवर्तन होते जाते हैं। मैं आत्मा प्योर पावरफुल से जा रहे हैं, बाबा के साथ पक्का करें यहां से जाकर अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाएंगे। धीरे से वापस अपने शरीर में ब्रिकुटी के बीच आत्मा सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियों से भरपूर त्रिकुटी के बीच से मैं आत्मा उन शक्तियों को अपने पूरे शरीर में रेडिएट करती हूँ। कौन कौन थोड़ा 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 कर सका, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड। ये थोड़ा 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 ही होना है, थोड़ा 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 थोड़ा। आज फर्स्ट डे थोड़ा थोड़ा, कल सेकेंड डे थोड़ा 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 थोड़ा, लेकिन सिर्फ क्या करना है, रोज करना है। कोई भी एक्सरसाइज कब करते हैं, रोज करते हैं ना, तो धीरे धीरे से उसकी मास्टरी हो जाती है। कभी कभी करते तो बहुत दर्द होता है, कभी कभी करेंगे तो नहीं होगा, दर्द होता जाए। माता जी आप यहाँ आके बैठ जाओ इस सोफे पे, या इधर आ जाओ इस सोफे पे, सबके बीच बैठ के खांसी नहीं करनी, इधर आ जाओ। तो कभी कभी एक्सरसाइज करते तो बहुत दर्द होता है बॉडी में, लेकिन रोज करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो दर्द खत्म हो जाता है और हम बहुत सहजता से उसको कर सकते हैं। राइट है कि नहीं बात, इजी इजी। इसको रोज करना है। कौन कौन रोज कर रहा है इसको, एवरी डे। और सिर्फ सुबह के लिए नहीं रखना है इसको, बीच में कभी भी, बीच में कभी भी। अब इसका रीजन क्या है, जितनी बार आप परम धाम की तरफ जा रहे हैं, आप इस सृष्टि के वायुमंडल के प्रभाव से अपने आप को ऊपर लेकर जा रहे हैं। और इस समय सृष्टि का वायुमंडल का प्रभाव ही हमें नीचे लेकर आ रहा है, और ये प्रभाव दिन ब दिन थोड़ा सा बढ़ता जाने वाला है। इसीलिए प्रैक्टिस इसको करना है कि सृष्टि के प्रभाव से अपने आप को बाहर, सृष्टि को प्रभाव करना है, परमात्मा की शक्ति लेकर पूरी सृष्टि पर देनी है। ठीक है, सहज। अगली चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमें समझने के लिए, कि परमात्मा इस समय आकर ये कार्य करा रहे हैं। सुना था सबने, सुनाया था। तो इस समय आकर क्यों ये कार्य करा रहे हैं, क्योंकि ये सृष्टि के परिवर्तन का समय है। इस समय सृष्टि के हालात को देखते हुए दुनिया के मन में प्रश्न है कि आखिर क्या होने वाला है। तो अब यहां से जाने के बाद ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। हाँ, रात खत्म होने वाली है और सुबह शुरू होने वाली है। तो ध्यान रखना, जब यहां से वापस जाएंगे, दो तरह के लोग हैं इस समय सृष्टि पर। एक जो कलयुग को और कलयुग बना रहे हैं, और दूसरा जो सत्ययुग को स्टार्ट कर रहे हैं। हमें कौन सी साइड पे खड़े होना है, पक्का है सबका? स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक बनाए, सामने लेकर आए स्वास्तिक। कितने भाग स्वास्तिक में, चार, और चार इक्वल भाग, चार इक्वल भाग। पहला भाग कैसे, ऐसे हाथ क्या कर रहा है, दे रहा है। पहला भाग है सत्युग, सृष्टि की सुबह, हाथ क्या कर रहा है, दे रहा है। इसलिए सत्युग में रहने वाली हर आत्मा कैसी है, देने वाली आत्मा है, देव आत्मा है। इसलिए हम उनको देवी देवता कहते हैं, इसीलिए हम उस युग को कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। धर्म अर्थात हर आत्मा ही डिवाइन थी। आज हर आत्मा स्ट्रेस्ड है ना, कल सबने हाथ उठाया था ना, खुशी चाहिए, मतलब हर आत्मा स्ट्रेस्ड है। तो कलयुग के एंड तक पहुंचते पहुंचते हर आत्मा स्ट्रेस्ड है, और सत्ययुग के बिगिनिंग में हर आत्मा परफेक्ट है। तो कलयुग के एंड तक पहुंचते पहुंचते सोल पावर बैटरी क्या हो गई, सोल पावर बैटरी क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई ना ऐसे इतनी, इसीलिए वो गुस्सा चिंता ये सब नॉर्मल हो जाता है। सत्ययुग के स्टार्टिंग में बैटरी कैसे होनी है, सत्ययुग की स्टार्टिंग में बैटरी कैसे होनी है, फुल चार्ज्ड। तो अभी आप बताओ कलयुग के एंड में इतनी और सत्ययुग के बिगिनिंग में इतनी, तो कौन चार्ज करेगा इसको, इतना बैटरी जब डिस्चार्ज होती है ना तो अपने आप होती है। आज सुबह फोन को चार्ज करके निकले होंगे, सारा दिन फोन धीरे 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 यूज होते होते होते, और नहीं भी यूज हो तो भी बैटरी कम होती रहेगी, राइट और रॉन्ग? है ना, हम कहेंगे ज्यादा तो फोन पे बात किया नहीं आज, फिर भी बैटरी 50% कैसे हो गई? एक बार आपने पावर सप्लाई से फोन को हटा दिया तो बैटरी टिप 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 कम होने शुरू हो जाती है। तो मैं आत्मा जब परम धाम में थी और मैं पावर सोर्स के साथ थी तो मैं बैटरी फुल्ली चार्ज्ड। इसीलिए जब भी परेशान होते हैं तो नजर किस तरफ जाती है, फिर कई बार लोग बोलते बस अभी इस चक्र से निकल कर कहां जाना है, बाहर घर जाना है, तो क्योंकि उस घर में बैटरी चार्ज थी। अब विजुअलाइज करो वो आत्मरूपी बैटरी फुल्ली चार्ज सृष्टि पर आती है तो वो आत्मा कैसी होगी, कैसी होगी फुल्ली चार्ज बैटरी? हम जैसे हमारी बिल्कुल ऑपोजिट। जब बैटरी डिप्लीट हो जाती है हम ऐसे हो जाते हैं, शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए। जब फुल्ली चार्ज होती है तो कैसे हो जाते हैं? तो ऐसे हो जाते हैं। इसलिए किसी भी मंदिर में कोई भी देवी देवता के चित्र देख लो, मूर्ति देख लो, हाथ हमेशा कैसे है, ऐसे। तो अब यहां से जाने के बाद हमें कैसा बनना है, कैसे बनना है? ऐसे, सबको देने वाला, हर परिस्थिति को देने वाला, हर आत्मा को देने वाला। अब आज से शांति चाहिए, खुशी चाहिए, प्यार चाहिए नहीं, शांति देने वाली आत्मा, प्यार देने वाली आत्मा। लेकिन हमें कौन देगा अगर हम सबको देंगे तो? सिंपल, जिसके पास है उसी से लेना है, जिनके पास है नहीं उनके सामने ऐसे खड़े होना नहीं है, राइट? उनके सामने नहीं खड़े होना, उनको सबको देना है। तो परम धाम से आत्मा सृष्टि पर आती है, बैटरी बिल्कुल चार्ज्ड होती है। तो जब आत्मा परफेक्ट होगी तो शरीर कैसा मिलेगा आत्मा को? परफेक्ट। आज आत्मा परफेक्ट नहीं है तो शरीर में कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। यहां से हो रहा है वो सारा, संकल्प से सृष्टि बनती है हमारी, संस्कारों से हमारा संसार बनता है। तो सत्युग में कैसी है आत्मा? प्योर परफेक्ट। तो बॉडी कैसी होगी सत्युग में? बॉडी कैसी होगी? परफेक्ट। आज दिन तक अगर देवी देवता की मूर्ति खंडित होती है तो उसको स्थापन नहीं किया जाता है, मतलब इतना सा भी होगा ना, इतना सा भी नहीं, नहीं, खंडित मूर्ति स्थापन नहीं करनी। क्यों खंडित मूर्ति स्थापन नहीं करनी? क्योंकि उनके शरीर को कभी कुछ ऐसा स्क्रैच भी नहीं आया था, क्योंकि आत्मा परफेक्ट तो शरीर भी परफेक्ट। तो प्रकृति भी कैसी होगी उस समय? परफेक्ट। तीनों परफेक्ट, इसलिए उसको स्वर्ग कहते हैं, सत्युग कहते हैं, हेवन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं। अब विजुअलाइज करो, आत्मा परम धाम से आई, बॉडी परफेक्ट, प्रकृति परफेक्ट, सभी आत्माएं डिवाइन है, सब आत्माएं डिवाइन है, पूरी सिविलाइजेशन डिवाइन है। और ये सिविलाइजेशन बनेगी अखंड भारत पर, इसीलिए भारत की ही इतिहास की ये कहानी है कि सोने की चिड़िया था, फिर क्या बनना है अभी? अभी फिर से सोने की चिड़िया बनना है। तो भारत ही प्राचीन अखंड भारत, जो बाकी कॉन्टिनेंट्स है ना, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ये सब अभी अभी के ढूंढे हुए कॉन्टिनेंट्स है। ये पानी के नीचे थे, पानी से बाहर आते हैं फिर उस पर सिविलाइजेशन बनती है। भारत एंशियंट सिविलाइजेशन, अखंड भारत, प्राचीन भारत। तो वो भारत सत्यु, इतना वाला साइज का भारत नहीं जो अभी है, वो भारत थोड़ा बड़ा होगा, उसको अखंड भारत बोलते हैं। अभी फिर वो डिवाइड होते 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 क्या हो गया? छोटा हो गया। अभी ये फिर से यूनाइट होगा, सारा साइकिल रिपीट होने का टाइम आया है। अब सत्युग में आ जाए, फर्स्ट बर्थ में देखें सब कुछ परफेक्ट है, फिर सत्युग में भी रोल्स होंगे, एक महाराजा होगा, एक महारानी होगी, साथ में प्रजा होगी, साथ में उसके रोल्स होंगे, लेकिन कोई भी आत्मा रोल कॉन्शियस नहीं होगी। रोल्स होंगे लेकिन हरेक कैसा होगा? नेचुरल सोल कॉन्शियस होगा, ये सत्युग है। फिर आत्मा एक शरीर छोड़ेगी, फिर दूसरा छोड़ेगी, फिर तीसरा लेगी। तो परमात्मा ने कहा एवरेज आयु हरेक की 150 वर्ष होगी, कलयुग में भी 100 वर्ष तो आयु हो जाती है, कुछ साल पहले तक तो बहुत कॉमन होता था 90s में 100 में जीना। तो सत्युग में एवरेज एज हर एक की बॉडी की 150 होगी। बीमारी तो होगी नहीं, जब उतनी एज हो जाएगी आत्मा स्व इच्छा से अपना शरीर छोड़ेगी। वहां पर जब कोई शरीर छोड़ेगा तो कोई रोएगा? कोई रोएगा? नहीं रोएगा। क्यों नहीं रोएगा? क्यों नहीं रोएगा? क्योंकि एक तो हर आत्मा ऐसे है, उसको उनसे कुछ चाहिए नहीं, वो उनको भी देने वाली आत्मा है। और हर एक को पता है कि आत्मा की मृत्यु नहीं हुई है, आत्मा का ये कॉस्ट्यूम अभी हो गया पूरा इसमें रोल। तो बहुत प्यार से ट्रांजिशन करके हम दूसरे शरीर में जाते हैं। तो ऐसे ऐसे एक शरीर लेते, दूसरा लेते, तीसरा लेते, करते करते सृष्टि की सुबह से दोपहर हो जाती है, वो है त्रेता युग। त्रेता युग में स्वास्तिक का अगला हाथ कैसे है? पहला हाथ ऐसे है, दूसरा हाथ कैसे है? ऐसे है। ऐसे मतलब डिविनिटी क्या हुई? थोड़ी सी कम हो गई। तो सत्युग को हम कहते हैं 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। 16 कला संपन्न, 16 कला मतलब थोड़ी भी कमी नहीं। जब कोई बात एकदम सच्ची होती है तो हम क्या बोलते हैं? 16 आने सच। अगर किसी ने बोला ना ये 16 आने सच्ची बात है, मतलब इसमें एक शब्द की भी मिलावट नहीं है, तो वो सत्युग मतलब 16 कला संपन्न। त्रेता युग में आते आते आत्मा 14 कला की हो जाती है, मतलब थोड़ी सी बैटरी क्या हो गई? कम। लेकिन फिर भी वो स्वर्ग ही है, वो स्वर्ग ही है। तो ये 5000 साल का चक्र है, उसमें ये 2500 साल तो परफेक्ट ही दुनिया है। लेकिन 2500 साल शरीर लिया छोड़ा, शरीर लिया छोड़ा, धीरे धीरे आत्मा शरीर के साथ अटैच होने लग जाती है। आप कोई चीज रिंग एक पहले पहने तो आपको याद रहता है ये रिंग अलग है, मैं अलग हूं। लेकिन अब वो रिंग जब महीनों महीनों पहन लिया तो वो रिंग ही हमारे शरीर का हिस्सा बन जाती है, मतलब हमें याद भी नहीं रहता कि अलग पहनी हुई है। और कभी वो गिर भी जाए तो बहुत दिन पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो इतना उसका हिस्सा बन गई थी। तो कोई बोलता है आपकी रिंग कहां गई? तो अच्छा रिंग कहां गई? पता नहीं चली, पता नहीं चली, वो इतना हिस्सा बन गई थी। तो कॉपर एज मतलब द्वापर युग से शुरू शुरू में पहली ट्रेस स्टार्ट होती है कि हमें ये भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं, और हम देह की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और जैसे ही खुद को देह समझेंगे तो दूसरे को भी किस नजर से देखेंगे? देह ही देखेंगे। जैसे ही देह की कॉन्शियसनेस में आ गए वहां से विकार शुरू होते हैं। तो काम विकार शुरू होता है, फिर क्रोध आएगा, फिर चिंता दुख, पर अभी वाला नहीं, इतना सा सिर्फ, इतना सा, एकदम इतना सा। और वो होती है द्वापर मतलब द्वैत। सत्युग त्रेता युग एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, अद्वैत। लेकिन द्वापर से दो मतलब आत्मा शरीर कॉन्शियसनेस चेंज हो गई। अब जैसे ही विकार शुरू होंगे, दुख शुरू होगा, किसकी याद आएगी? किसकी याद आएगी? परमात्मा की। सत्युग में परमात्मा को याद करेंगे? सत्युग में भगवान को याद करेंगे? नहीं याद करेंगे। परफेक्ट चलते हैं तो डॉक्टर को याद नहीं करते। कब याद करते हैं? कुछ दर्द दर्द होएगा तो बोलेंगे अरे वो डॉक्टर को फोन करो। परफेक्ट है तो कोई बोलेंगे डॉक्टर के पास जाने, बोले मेरे को क्यों डॉक्टर के पास जाने, मुझको क्या हुआ। तो सत्युग त्रेता युग में हम परमात्मा को याद नहीं करते हैं। द्वापर युग से जब दर्द शुरू होता है तो उसको याद करते हैं। तो सबसे पहले हम शिव ज्योतिर्लिंग बनाते हैं, क्योंकि हम आत्मा परम धाम से आई थी, हमें याद था कि मेरा परमात्मा कैसा है, ज्योति है, नाम शिव है। लेकिन अभी ज्योति को कैसे याद करना? तो हमने ज्योति का क्या किया, एक फिजिकल फॉर्म बनाया और उसको हमने कहा शिव ज्योति लिंग। मतलब नाम शिव है, रूप ज्योति है, और ये उसका फॉर्म है। हमें क्लैरिटी थी हम क्या बना रहे थे। फिर धीरे धीरे और समय बीता और हमारी प्योरिटी कम होती गई आत्मा की, तो आत्मा ने अपने पूर्वजों को याद करना शुरू किया। पूर्वज कौन थे? उसके द्वापर युग में जो आत्मा थी उसके पूर्वज कौन थे? वो सत्युग के देवी देवता थे। तो जैसे आज हम अपने पूर्वजों की फोटो रखते हैं घर में, किसी का ज्यादा बड़ा मकान होता है तो वो अपने पूर्वजों की मूर्ति भी बनाते हैं घर में। तो द्वापर युग में उन्होंने अपने पूर्वजों की मूर्ति बनाने शुरू की कि ये हमारे पूर्वज हैं, हमें इन जैसा बनना है प्योर। वो किसकी मूर्ति बना रहे थे, किसकी मूर्ति बना रहे थे? वो अपने पूर्वजों की मूर्ति बना रहे थे। फिर पूर्वज की मूर्ति बनाकर हम सामने क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, फिर हम एक फूल रखते हैं, फिर हम एक दिया चलाते हैं। वो भगवान की प्रार्थना नहीं कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, पूर्वजों की याद कर रहे थे। अपनी अगली जो जेनरेशन आ रही थी उनको पूर्वजों के बारे में सिखा रहे थे। धीरे धीरे और समय बीतता गया, आत्मा की शक्ति क्या होती गई, और कम होती गई। परम धाम से पवित्र आत्माएं सृष्टि पर आई, जिन्होंने आकर एक एक धर्म स्थापन किया। तो जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, मोहम्मद, एक एक रिलीजन आया। लेकिन जो एक एक प्रॉफिट आए ना, वो भी धर्म स्थापन नहीं करने आ रहे थे, वो धर्म सिखाने आ रहे थे। उन्होंने भी क्या सिखाया कि हम कौन हैं, आत्मा है, लाइट है, प्योर है, और उंगली कहां की तरफ की, ऊपर की। लेकिन हम टीचिंग को स्टडी कर रहे थे, लेकिन हम टीचिंग से ज्यादा टीचर से कनेक्ट हो गए। अगर हम टीचिंग से कनेक्ट होते हम सारे क्या हो जाते, वो हमें क्या करने के लिए आए थे, यूनाइट करने के लिए आए थे। हमने कहा मेरा टीचर अलग, आपका टीचर अलग, तो हम यूनाइट होने की जगह क्या हो गए, थोड़े से डिवाइड हो गए। वो हमको डिवाइड करने नहीं आए थे, वो हमको यूनाइट करने आए थे। और समय बीतता गया, एक रिलीजन के अंडर भी फिर हम क्या होने लग गए, एक रिलीजन भी डिवाइड होने लग गया ना, एक रिलीजन भी एक नहीं रहा अभी, तो एक रिलीजन के अंदर भी और डिवीजन होती गई। सोल पावर क्या होती गई, और कम होती गई। ऐसे करते करते हम कलयुग में पहुंच गए। द्वापर युग में हाथ कैसे था, स्वास्तिक कैसे है द्वापर युग में, सत्ययुग में ऐसे है, त्रेता युग में ऐसे है, द्वापर युग में ऐसे है। क्या शुरू हो गया था, मांगना शुरू हो गया था। और कलयुग में हाथ ऐसे है, चौथा हाथ कैसे होता है स्वास्तिक का, ऐसे। अब कलयुग में क्या होना शुरू हो गया, मारना शुरू हो गया। फिर से रिपीट करें, 1 2 3 4। तो कलयुग तक आते आते बैटरी क्या हो गई, बिल्कुल कम। तो विकारों की अति, कलयुग में भी गुरु नानक देव जी आए, उंगली कहां थी, ऊपर, एक ओंकार, सत नाम, वाहे गुरु, वो है, वो हर एक ऊपर ही इशारा दे रहे थे। लेकिन हम किससे कनेक्ट हो गए, हम उनसे कनेक्ट हो गए। कलयुग में आते आते जिन देवी देवताओं को हम पूर्वज मानकर उनकी महिमा कर रहे थे, हाँ, उनको याद कर रहे थे, उनका गायन कर रहे थे, उनका कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करना मतलब किसी की कीर्ति की महिमा करना, कि ऐसी आत्मा थी ये, ऐसी आत्मा थी, ऐसी आत्मा थी, इसको कीर्तन करना कहते हैं। लेकिन कलयुग तक पहुंचते पहुंचते हमें ये भूल ही गया कि हम देवी देवता पूर्वज की महिमा कर रहे हैं। हमने उनको क्या मानना शुरू कर दिया, हमने कहा यही भगवान है। उनको हमने भगवान पता क्यों कहा, क्योंकि वो बिल्कुल भगवान जैसे ही है, बिल्कुल भगवान जैसे हैं। क्योंकि आत्मा जब परम धाम से नीचे आती है ना, तो आत्मा कैसी होती है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल प्योर। तो अगर परमात्मा वाइब्रेशन में अगर 100 है, तो देवी देवता 99 है, इतना वो परमात्मा जैसे हैं। तो परमात्मा और देवात्मा में क्या फर्क है, देवात्मा देह ले रही है, परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। अगर परमात्मा भी देह ले ले, तो फिर उनकी भी बैटरी क्या होने लग जाएगी, कम होने लगेगी। तो एक परमात्मा है, देवी देवता कितने हैं, देवी देवता तो कितने सारे हैं। आज भी हर एक घर में एक नाम है जिसको हम कहते हैं कुल देवी है, कुल देवता है। किस किस के घर में ऐसा नाम है, तो उसका मीनिंग क्या है, फिर उसका मीनिंग है ये मेरे कुल देवी है, ये मेरे कुल देवता है। मतलब हम किसके कुल के हैं, मतलब हम किसके कुल के हैं, हम देवी देवताओं के कुल के हैं। मतलब देवी देवताएं हमारे पूर्वज, हम उनकी वंशावली। तो हमारे संस्कार भी कैसे होने चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, हमारी संस्कृति कैसी होनी चाहिए। अब ऐसे करते करते क्या हुआ, द्वापर युग से हमने देवी देवताओं में भगवान को ढूंढा, हमने धर्म स्थापकों को भी उस रूप से याद किया, हमने फिर धीरे धीरे औरों को भी याद किया, ये मेरे लिए भगवान है, ये मेरे लिए भगवान है। आज तो कोई किसी के लिए कुछ अच्छा कहते कहते ये मेरे लिए भगवान है, अभी तो कोई सब भगवान हो गए, सब भगवान। डॉक्टर ने मुझे ठीक किया, डॉक्टर साहब आप मेरे भगवान हो। टीचर ने मुझे पढ़ाया, मेरे को लायक बनाया, मेरे लिए तो टीचर मेरा भगवान है, मेरे लिए तो मेरे माँ बाप मेरा भगवान है। जिसने हमारे जीवन में कुछ अच्छा किया, हमने उसको भगवान का दर्जा दिया, क्योंकि भगवान ने हमारे जीवन में अच्छा किया था। लेकिन ऐसे करते करते बैटरी किससे कनेक्ट हो रही थी? सिर्फ बैटरी, अच्छी अच्छी बैटरी से कनेक्ट हो रही थी, अच्छी अच्छी बैटरी से कनेक्ट हो रही थी। लेकिन बैटरी किससे कनेक्ट नहीं हो रही थी? बैटरी पावर हाउस से नहीं कनेक्ट हो रही थी। तो बैटरी को आप कितनी भी अच्छी से बैटरी से कनेक्ट करो, वो थोड़े टाइम के लिए चार्ज होती है, फिर वापस क्या होने लग जाती है, फिर ऐसे होती है। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए किससे कनेक्ट करना है? पावर हाउस से कनेक्ट करना है। तो अब आ गए हम कलयुग के भी अंतिम समय में। इसीलिए परमात्मा अपने वायदे अनुसार कि जब जब इस सृष्टि पर धर्म की ग्लानी होगी, मैं स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होऊंगा। अर्थात हर चक्र में कलयुग के अंतिम समय में ही परमात्मा अवतरित होंगे। क्योंकि अगर पावर हाउस आ जाए तो उसके बाद का अगला युग कैसा होना चाहिए? अगर परमात्मा सत्युग में आए तो सत्युग के बाद त्रेता युग नहीं आ सकता, द्वापर में आए तो द्वापर के बाद कलयुग नहीं आ सकता है। क्योंकि पावर हाउस आ जाए तो उसके बाद तो हमारी एनर्जी कहां जानी चाहिए? ऊपर जानी चाहिए, नीचे नहीं जानी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन, जो आत्मा सत्युग में आई सृष्टि पर, अब इसको देखना है, प्योर परफेक्ट आत्मा, वो जो सृष्टि पर सत्युग में दिव्य आत्मा आई थी, आज वो कहां पर है? आज वो कहां पर है? हर एक आंसर करे। सत्युग पर सृष्टि, सत्युग में सृष्टि पर आत्मा आई थी, डिवाइन आत्मा थी, कॉस्ट्यूम परफेक्ट था, बॉडी 150 वर्ष उसमें जिए, फिर शरीर छोड़ा, अगला लिया, फिर शरीर छोड़ा, अगला लिया, फिर शरीर छोड़ा, अगला लिया। वो जो सत्युग में आत्मा आई थी, आज वो कहां पर है? एक रूल याद रखना है, परम धाम से एक आत्मा जब सृष्टि पर आती है तो पूरे चक्र में सृष्टि पर रहती है, चक्र के एंड में ही वापस जाती है। इसीलिए पॉपुलेशन हमेशा क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर सब लोग ऐसे बीच में ऊपर जा रहे हैं तो पॉपुलेशन तो कम होनी चाहिए। पॉपुलेशन कलयुग के एंड तक बढ़ती रहेगी और फिर एकदम से डिक्रीज होगी। अगर अभी आप स्टडी कर रहे हैं तो आजकल बात होने शुरू हो गई है कि पॉपुलेशन डिक्रीज होने शुरू हो गई है, स्टार्टिंग है अभी ये कलयुग के एंडिंग समय का। तो सत्युगी आत्मा कहां बैठी है? कौन सी कुर्सी पे? रखो रखो हाथ, कहां बैठे हैं? कहां बैठे हैं? हाँ तो उठाओ सारे सत्युगी देवी देवता। देखो क्या बनकर आए थे? बिजनेसमैन। कैसे वाले बनकर आए थे? ऐसे 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 ऐसे। अभी क्या बनकर जाएंगे? इसीलिए कथा करते हैं ना सत्यनारायण की, तो क्या कहते हैं? नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बने। कितनी बार हमने वो कथा सुनी लेकिन कभी सोचा नहीं इसका मीनिंग क्या है, कि नर ऐसी करनी करेगा जो नर से नारायण बनेगा, नारी से लक्ष्मी बनेगा। तो नर और नारी मतलब हम कलयुग में, और श्री लक्ष्मी नारायण मतलब सत्युग में। तो कलयुग में नर और नारी कुछ ऐसा करेंगे जो श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। क्या ऐसा करना पड़ेगा कलयुग में जो हम सत्युगी आत्मा बन जाए? बैटरी को चार्ज। कलयुग मतलब बैटरी इतना, सत्युग मतलब बैटरी इतना। तो जब ब्रह्मा बाबा को, जिनकी तस्वीर हम देखते हैं, ये गुरु नहीं है, ये टीचर भी नहीं है, ये इस विश्वविद्यालय के फर्स्ट स्टूडेंट है, इनको कुछ नहीं आता था ये वाला सब, तो परमात्मा ने इनको यूज करके ये ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले जो साक्षात्कार हुआ, उस साक्षात्कार में तीन चीजें दिखाई दी कि ये कलयुग कैसे बदलने वाला है। तो फर्स्ट साक्षात्कार था वॉर का, युद्ध का। उस समय 1936 में जब वो जापान वाला युद्ध भी हुआ नहीं था तभी, तो एक वो था कि विश्व में ऐसा युद्ध होगा, भारत में नहीं होगा, भारत में ग्रह युद्ध होगा, सिविल वॉर, मतलब जो अभी तैयारियां चल रही है ना बहुत सारी ऐसे, वो भारत में नहीं होगा वो वाला वॉर, क्योंकि भारत खंड अविनाशी खंड है, जहां भी अगर इस तरह वाला वॉर हो गया ना जो अभी है तैयारी, तो फिर वो खंड में सिविलाइजेशन नहीं हो सकती उसके बाद। अगर अगर न्यूक्लियर कुछ हो गया उसके बाद वो लैंड सारी क्या हो जाती है, उसके ऊपर सिविलाइजेशन नहीं हो सकती है उसके बाद। तो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने ये तीन साक्षात्कार दिखाए, एक विश्व युद्ध, दूसरा भारत में ग्रह युद्ध, दिख रहे हैं आसार ग्रह युद्ध के आजकल, दिख रहे हैं ना, अभी सब दिख रहा है कैसे हो रहा है, और तीसरा प्राकृतिक आपदाएं, इतनी गर्मी होगी जो दोनों पोल्स हैं हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल वो मेल्ट होने लगेंगे, ऑलरेडी शुरू हो गए हैं, जब वो इतनी बर्फ मेल्ट होगी तो पूरी पृथ्वी पर क्या हो जाएगा, पानी ही पानी ही पानी, और जब ये इतना पानी पानी हो जाएगा तो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स ऐसे पानी में जाएंगे धीरे से, ये पूरी सृष्टि परिवर्तन होनी है, और भारत वो अखंड भारत अविनाशी खंड वो सृष्टि पर सृष्टि चक्र को फिर से शुरू करेगा कि भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। तो भारत को सत्युग कौन बनाएगा, आप दिख रहे हैं आपको वर्ल्ड मैप पे भारत सडनली पावरफुल होना शुरू हो रहा है, सब कुछ जो होने वाला है वो होना शुरू हो चुका है, अभी समय बहुत कम है, और वो जो विश्व युद्ध है वो भी शुरू हो चुका है, अभी नहीं मतलब अभी नहीं हो जाएगा, लेकिन अगर हम ठीक ठाक चले तो ये हमारी लाइफ टाइम में हम देखेंगे इसको, ये पक्का है, क्योंकि वो शुरू हो चुका है। एक चीज शुरू हो जाती है ना वो भी धीरे धीरे धीरे, हर थोड़े दिन बाद बोलेंगे नहीं अभी हम शांति करते, फिर हर थोड़े दिन बाद फिर से स्टार्ट करेंगे, वो एक प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो वो जो तीनों जो साक्षात्कार थे वो तीनों साक्षात इस टाइम सृष्टि पर दिखाई दे रहे हैं, विश्व युद्ध की शुरुआत, ग्रह युद्ध के आसार, और प्राकृतिक आपदाओं की तो अगर आप साइंटिफिक कम्युनिटी से पढ़ेंगे तो हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके। अभी परसों के एक न्यूज़पेपर में था, मैं विदेश में थी, वहां के न्यूज़पेपर में था कि बहुत जल्दी अमेरिका के जो कोस्टल एरिया पे जो जगह है वो पानी में जाएंगे, क्योंकि पानी से बनी हुई है ना ये पृथ्वी को, पानी से सुखा के वो शहर बनाए हैं, वो सबसे पहले पानी में जाएंगे। बॉम्बे से कौन कौन आया, बॉम्बे कैसे बना, तो जो पानी, बट वैसे भी बाकी हर जगह भी पानी से बहुत सफाई होनी है, हम अपने घर की सफाई किससे करते हैं, पानी से करते हैं, सृष्टि की सफाई भी पानी से होगी। खैर एनीवेज ये डरने की बात तो कुछ है ही नहीं, वो तो होना ही है सृष्टि पर, इम्पोर्टेंट ये है कि इस समय पर दो तरह के लोग होंगे, एक है जो कलयुग को और एक है जो सत्युग की शुरुआत करेंगे, हमें कौन सी साइड पे खड़े होना है, पक्का पक्का, कौन कौन हाथ अपना कर रहा है, पक्का पक्का, ऐसे आप यहां आ गए ना तो उसी से आपकी शुरुआत हो जाती है, जो चार दिन रहकर अच्छे से ज्ञान को समझ लेता है वो ज्ञान का बीज बहुत अच्छे से चला जाता है आत्मा के अंदर, परमात्मा को पहचान लेता है, समझता है, अब इसके बाद कितना सत्योगी बनना है ना वो आगे के जाके पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन बनना जरूर है। ठीक है, तो यहां से क्या लेकर जा रहे हैं, सत्योगी संस्कार और सत्योगी संसार बनाने का लक्ष्य। तो अब बिजनेस भी करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, चैरिटी नहीं करेंगे, बिजनेस ही करेंगे, लेकिन बिजनेस में भी इंटेंशन कैसा होगा, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखना, एकदम यहां उंगली रखो, आत्मा एक सेकेंड में शरीर छोड़ेगी, क्या लेकर जाएगी अपने साथ, एक सेकेंड में होता है, अभी तो आजकल पता भी नहीं चल रहा, पहले टाइम भी नहीं मिल रहा ठीक करने के लिए कुछ अपने कार्मिक अकाउंट को, एक सेकेंड में निकल गए, क्या लेकर गए, अभी अभी मैंने उनसे क्या बात किया, मेरे साथ गया, अभी अभी मैं इनके लिए क्या सोच रही थी वो मेरे साथ गया, अभी अभी कल मेरा ऑफिस में क्या हुआ था वो मेरे साथ जाएगा, हर चीज जो मैं आत्मा ने सोची फीलिंग क्रिएट की, बोली की, वो मुझ आत्मा पर रिकॉर्डेड है, वो है मेरे कर्म, वो है मेरे कर्म। और जैसा मेरा कर्म होगा, जैसा मेरा कर्म होगा वैसा ही मेरा भाग्य होगा। कौन कौन मानता है कि परमात्मा सबका भाग्य लिखते हैं? कहते हैं ना, सब कुछ किसकी मर्जी से हो रहा है? ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। कौन कौन मानता है सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है? ओके, अब एक मिनट सोचो कि अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है तो सृष्टि कैसी होगी? सिर्फ एक सेकंड सोचो, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, सृष्टि कैसी होगी? ये युद्ध ईश्वर की मर्जी से चलेगा? हॉस्पिटल जो बीमारियों से भरे हुए हैं, ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है? एक बच्चा घर से बाहर निकला फिर वापस घर नहीं आया, ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है? मन में एक सेकंड का भी सुकून नहीं है, ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है? अगर आपकी मर्जी से ही भाग्य आप लिख दो तो आप कैसा लिखोगे सबका? अगर आप अपने बच्चे का भाग्य लिखो तो कैसा लिखोगे? कितना अच्छा? कभी कभी थोड़ा दुख, थोड़ा सा, और थोड़ा सा से क्या होने वाला है? नहीं, एक पेरेंट भी अपने बच्चे के जीवन में थोड़ा दुख भी नहीं लिख सकता, थोड़ी बीमारी भी नहीं लिख सकता, थोड़ा दर्द भी नहीं लिख सकता। अच्छा, एक सेकंड सोचना, किसी ने आपको बहुत धोखा दिया है, बहुत कुछ गलत आपके साथ किया है, आपको उसके बच्चे का भाग्य लिखने की पावर मिल जाए, आप उसके बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? ने आपके साथ गलत किया है, आप उसके बच्चे के भाग्य में कितना गलत लिख सकते हैं? चांस मिला है गलत लिख दो, थोड़ा सा इतना गलत किया उन्होंने आपके साथ, नहीं लिखेंगे ना। आज कितना कुछ गलत हो रहा है सृष्टि पर, अभी अभी बच्चा है, थोड़े टाइम बाद चला गया, माँ बाप है, दादा दादी भी है, बच्चा चला गया, ये किसकी मर्जी से होता है ये सारा कुछ? हम कैसे कहते हैं ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है? क्योंकि हमने सबको कहा ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। इसीलिए जब किसी के घर में इतनी कोई बड़ी बात आती है वो भगवान से ही नाराज हो जाते हैं, फिर कहते भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, क्योंकि सब लोग आसपास के बोलते हैं भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी। क्या बोलते हैं हम किसी को? हम उसको ये कहते हैं कि भगवान की मर्जी से आपका बच्चा चला गया, तो उसको वो भगवान अच्छे कैसे लगेगा? तो उस समय जिस समय भगवान की शक्ति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, हम उससे नाराज हो जाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो आज से क्लैरिटी रखना है, अगर परमात्मा भाग्य लिखेगा तो सब कुछ परफेक्ट लिखेगा। दो बिलीफ सिस्टम है कि भाग्य परमात्मा लिख रहे हैं या भाग्य कर्मों से लिखा जा रहा है, तो दोनों तो नहीं हो सकता ना, या तो परमात्मा लिख रहा है या कर्मों से लिख रहा है। अगर परमात्मा लिख रहे हैं तो सबका परफेक्ट होगा और एक जैसा परफेक्ट होगा, परमात्मा भेदभाव भी नहीं करने वाले। आप अपने बच्चों में भेदभाव करेंगे भाग्य लिखेंगे उनका? तो नहीं। एक आप बच्चों का भाग्य परफेक्ट लिखेंगे और आप अपने बच्चों का भाग्य इक्वली परफेक्ट लिखेंगे। आज सृष्टि पर इक्वालिटी है भाग्य में? नहीं। कोई 100 वर्ष तक निरोगी है, कोई पैदा ही बीमारी के साथ हो रहा है, ये कोई इक्वालिटी है? किसी के पास खाने के लिए नहीं है, किसी के पास अपना जहाज है, ये इक्वालिटी है? किसी के पास 10 लोगों का परिवार है और किसी के पास पैदा होते ही माता पिता भी नहीं है, ये इक्वालिटी है? तो बिल्कुल इक्वालिटी नहीं है भाग्य के अंदर। तो परमात्मा अगर लिखे तो परफेक्ट लिखे, और कैसा लिखे? इक्वल लिखे। ये हमेशा याद रखो और दुनिया में सबको सुनाओ, क्योंकि नहीं तो लोग भगवान से या तो डरते हैं या फिर नाराज हो जाते हैं। भगवान प्यार का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है, उससे सिर्फ लेते जाओ और उसको शुक्रिया करते जाओ, और उससे ले लेकर अपने कर्मों को बदलकर अपने भाग्य को बदलो। तो परमात्मा को भाग्य विधाता क्यों कहते हैं? वो भाग्य लिखने का विधान सिखाते हैं। आज हम 3 दिन से सीख रहे हैं ना, कैसे सोचना है, कैसे व्यवहार करना है, ये वो विधान सिखाते हैं। वो श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति देते हैं, लेकिन कर्म तो हमको ही करना है। आज हम एक हॉल में 600 बैठे हैं, ज्ञान सबको सेम मिलेगा, योग भी सब सेम सीखेंगे, लेकिन इसके बाद हरेक उसका क्या करेगा, वो हरेक का अलग अलग कर्म होगा, और जैसा जैसा कर्म होगा वैसा वैसा, जैसा जैसा कर्म होगा वैसा वैसा भाग्य होगा। तो बिग बॉल पकड़े हाथ में, ये बॉल पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में होती है, ये मेरा कर्म है, ये कब तक मेरे कंट्रोल में है, जब तक ये हाथ से छूटता नहीं है। कर्म क्या है, मेरी हर सोच कर्म है, मेरी हर सोच के पीछे के जो भाव है वो भी मेरे कर्म है। अगर आप किसी से अच्छे से बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या है उनसे अच्छे से बात करने का, आप उनको खुश करना चाहते हैं, आप उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि दुनिया आपको कहे कि आप बहुत अच्छे हैं, या वो आपका निज संस्कार है अच्छे से बात करना, इसलिए आप कर रहे हैं। तो कर्म सिर्फ अच्छे से बात करना नहीं है, उस कर्म के पीछे का इंटेंशन क्या है वो हमारा पहला कर्म है। हम सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, नाम मान शान के लिए कर रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, या अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं। इंटेंशन हमारा पहला कर्म है। इंटेंशन तो बहुत सूक्ष्म होता है, कई बार हम भी नहीं चेक करते मेरा इंटेंशन क्या है। तो पहला कर्म है इंटेंशन, मतलब भाव। दूसरा कर्म है भावना, मतलब सोच, फीलिंग्स। तीसरा कर्म है शब्द, और चौथा कर्म है व्यवहार। रिपीट करें, भाव भावना, सोच, शब्द, व्यवहार। ये एनर्जी है जो मुझ आत्मा से निकलकर बाहर जाती है। हमें लगा मैंने अच्छे से बात की, मैंने अच्छे से व्यवहार किया, तो टिक, मेरा अच्छा कर्म। मैंने अच्छा सोचा, क्या मैंने अच्छा सोचा? और अच्छा मतलब ऐसे गंदा नहीं सोचते, लेकिन ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये भी तो अच्छा नहीं है, ये उसको लोअर एनर्जी दे रहा है। तो इस तरह से अभी ज्ञान के साथ क्या हो जाता है, हम अपने कर्मों पे बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना शुरू करते हैं, मोटा मोटा चेकिंग नहीं करते। बिजनेस में आप मोटा मोटा चेकिंग करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा लॉस हो कर रहा है, क्योंकि कहीं तो लॉस हो रहा है, इसीलिए खुशी अनुभव नहीं हो रही है। तो ज्ञान की रोज की मुरली से ना बहुत सूक्ष्म चेकिंग शुरू होती है, बहुत सटल। अच्छा, यहां लॉस हो रहा है, इस बात से लॉस हो रहा है, और फिर जैसे ही लॉस दिखता है फिर तो हम उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब बॉल पकड़े, मेरी हर भाव भावना, सोच, शब्द, व्यवहार मेरा कर्म। एनर्जी जो मैंने क्रिएट की बाहर जाएगी वो मेरा कर्म। जो बॉल जाएगी वही बॉल वापस आएगी, उसको हम भाग्य कहते हैं। परिस्थितियां सामने से आती है, लोगों का व्यवहार सामने से आता है, शरीर की बीमारी सामने से आती है, काम कारोबार में उतार चढ़ाव सामने से आता है, प्रकृति में उथल पुथल सामने से आता है। तो जो भी मेरे साथ होगा वो बॉल वापस आ रही है, जो मैं कर रही हूं वो बॉल जा रही है, जो मेरे साथ हो रहा है वो बॉल वापस आ रही है। करें एक बार, जो हम ये फिक्स करना है चित्र, तो सारा दिन में बहुत क्लैरिटी है, ये मेरा कर्म, ये मेरा भाग्य, जो हम कर रहे हैं बॉल जा रही है, जो हमारे साथ हो रहा है बॉल आ रही है। कनेक्शन क्या है दोनों का, जो हम कर रहे हैं बॉल जा रही है, जो हमारे साथ हो रहा है बॉल आ रही है। कनेक्शन क्या है दोनों के बीच का, वेरी गुड, जो जा रही है वही आ रही है, ये फिक्स कर लेना है। यहां से बॉल आ नहीं सकती है जब तक, सब इकट्ठे मिलके बोलो, यहां से कोई बॉल आ नहीं सकती है जब तक कभी ना कभी फेंकी नहीं थी। तो सारी पावर कब है, इसलिए कल से परसों से हम देख रहे हैं, हर सोच इधर, हर इंटेंशन इधर, हर शब्द व्यवहार इधर, प्योरेस्ट। तो हमारा कर्म का क्वालिटी क्या हो जाएगा, प्योरेस्ट। अब जो बॉल हम फेंकेंगे वो सामने हिट करेगी, वापस आएगी, वापस आने का टाइम अलग अलग होगा। कोई बॉल 5 सेकंड में वापस, कोई बॉल 5 घंटे में वापस, कोई बॉल 5 दिन में वापस, कोई बॉल 50 साल बाद वापस, कोई बॉल 200 साल बाद वापस। ठीक है, अब जो बात 200 साल बाद वापस आएगी बॉल, तब तक हमारा क्या हो चुका होगा, तब तक कुछ नहीं, हमने सिर्फ ड्रेस चेंज कर ली होगी। कल सबने अलग अलग कपड़े पहने हुए थे, अलग अलग कपड़े पहने थे, किसी से आपने कैसे बात की, किसी से आपने कैसे बात की। सपोज आपने ये ड्रेस पहनी थी और इसमें आपका आर्ग्यूमेंट हो गया एक दूसरे के साथ। अब आज तो अलग अलग ड्रेस पहनी हुई है, तो क्या रिश्ता एकदम से परफेक्ट हो जाएगा? नहीं, कल झगड़ा किया था पुरानी ड्रेस में। तो सुबह मिलेंगे, उस झगड़े से ही स्टार्ट होगी एनर्जी, मतलब मन में वो गांठ होगी, मन में वो कड़वाहट होगी। ड्रेस बदली सिर्फ, ड्रेस से कुछ भी नहीं और बदलने वाला है। इसी तरह डेथ मतलब मैंने ड्रेस बदली, मैंने ये शरीर चेंज किया, मैं वो ही हूं। मैं आत्मा इस शरीर को छोड़ूंगी एज इट इज। आप अब भी जैसे हैं वैसे का वैसा वो बच्चा होने वाला है। अभी आजकल क्यों जग रहा है कि बच्चों में शक्ति थोड़ी कम है? क्योंकि हम ही है ना वो, जो अभी आज शांति नहीं है, खुशी नहीं है, प्यार नहीं है, वही तो जाके बच्चा बन रहे हैं। तो वो बच्चे खुश कहां से हो जाएंगे? कहां से उनके पास रेजिलियंस पावर आएगी? और प्लस वायुमंडल भी वैसा है। तो हमेशा याद रखना है, मैं अब भी जो हूं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में सेम टू सेम। कुछ भी चेंज करना है अगर, तो कब करना है? अभी चेंज कर लो, नहीं तो सब कुछ साथ में जाने वाला है। अब इंपॉर्टेंट, मैंने इनको ये बॉल फेंकी, टाइम बीत चुका, बॉल इमीडिएटली वापस नहीं आई, तब तक मेरा कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। हो सकता है उनका भी कॉस्ट्यूम चेंज हो गया। बॉल वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। वेरी गुड, बस इतना याद रखना है, आएगी ही और आनी ही चाहिए। अगर नहीं आती है तो इट्स नॉट फेयर, तो इट्स नॉट फेयर। मैंने गलत बॉल उनको फेंक दी, मैं आराम से मौज में रही, फिर मुझे आत्मा ने शरीर चेंज कर लिया, अगली बार मैं और गलत फेंकूंगी, वापस तो कुछ आ नहीं रहा। अगर फेयर नहीं होता ना, तो इस सृष्टि पर इतना कुछ जो हो रहा है ना, वो सब कुछ पे क्वेश्चन मार्क हो जाता, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे क्यों। इसीलिए जो गीता सार टंगा होता है ना हर घर में दरवाजे पे, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला है बहुत अच्छा। अब अच्छा तो हो नहीं रहा, फिर भी उस पे लिखा है कि अच्छा, उसका मीनिंग क्या है? जो हुआ वो सही, हमारे कर्मों अनुसार वो बिल्कुल सही, जो हो रहा है वो भी सही, और जो होगा वो भी बिल्कुल सही। तो अब याद रखेंगे कि जो सामने से आ रहा है वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोलते जाएं, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे बिजनेस में ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ भी आ जाए ना सामने से, अच्छा वाला आ जाए, मुश्किल वाला आ जाए, बहुत मुश्किल वाला आ जाए, सबसे पहले तो शक्ति इसलिए बच जाती है क्योंकि हम ढूंढते नहीं किसको ब्लेम करना है, क्योंकि हमें पता है ये जो आया है उसका जिम्मेवार एक ही व्यक्ति है। कौन? मैं। वेरी गुड। तो पावर किसके पास आ जाती है? सारी मैं। दूसरा हमें पता है इसको ठीक भी एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो कौन? मैं। बॉल मैंने ही फेंकी थी, मेरी फेंकी हुई वापस आ रही है, अब इसको पकड़ो। यहां से बॉल गई, फेंकी, वहां से वापस आ रही है। जो बॉल वापस आ रही है उस पर मेरा कोई कंट्रोल? वो तो उस पर कंट्रोल कब था? जब फेंक रहे थे। जब वापस आ रही है वो तो आनी आनी है वापस। तो मेरे पास कौन सी पावर है अभी? मेरे पास अभी कौन सी पावर है? मैंने इस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो मेरा रिस्पॉन्स। मतलब इन्होंने कुछ ऐसा गलत बोला, मेरी फर्स्ट थॉट उनके बारे में मेरी नई बॉल है, मेरा शब्द उनके साथ मेरी नई बॉल है, मतलब मेरा रिस्पॉन्स मेरी नई बॉल है। मेरे बिजनेस में अभी कोई प्रॉब्लम आया, मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है। अभी मेरी स्थिति क्या है, वो मेरा न्यू बॉल है। अभी मेरा डिसीशन क्या है, वो मेरा न्यू बॉल है। अभी मैंने किसी पे ब्लेम किया या रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पूरी टीम को जोड़ा और मिरेकल क्रिएट किया, ये मेरा न्यू बॉल है। तो पावर किस पर है? आने वाली बॉल पर पावर है? नहीं, वो तो अब छूट गई थी, वो आई है। लेकिन पूरी पावर किस पर है? हमेशा याद रखें, भाग्य यहां से डिसाइड होगा। जो आ रहा है वो तो आना ही है, लेकिन अब भी हम उसके साथ क्या करेंगे वो आपकी लाइफ की क्वालिटी बना देगा। किसी के जीवन में फोर्थ स्टेज कैंसर आता है, बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट है, लेकिन अभी वो बहुत पावरफुल है, अभी वो बहुत लाइट है, अभी कहते हैं आया ना तो कोई बात नहीं ना, इलाज करेंगे सब ठीक हो जाएगा। उनको सफरिंग नहीं हो रही है, कार्मिक अकाउंट बहुत बड़ा है लेकिन सफरिंग नहीं हो रही है। किसी को 100 बुखार है कल सुबह सिर्फ, कहते हाय मैं कितना बीमार, अभी मेरे से कुछ नहीं होने वाला, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है। कार्मिक अकाउंट का साइज क्या है? इतना है, लेकिन नई बॉल कैसी वाली है? बहुत सफरिंग है, तो वो भाग्य ज्यादा दर्द में है। तो जन्म पत्री जाके पूछकर अपनी लाइफ डिसाइड नहीं करना। जन्म पत्री आपको क्या बताने वाली है? ये बॉल आएगी अगले महीने, ये बॉल आएगी अगले साल, ये बॉल आएगी। जन्म पत्री ये बताएगी और बिल्कुल सही बताएगी कि ये आएगी, लेकिन जन्म पत्री आपको ये नहीं बताएगी कि आपका भाग्य कैसा होगा, क्योंकि भाग्य आने वाली बॉल से नहीं, भाग्य नई जाने वाली बॉल से बनता है। तो इवन अगर वो आपको बताएंगे कि अगले 6 साल बहुत भारी है, राइट बता रहे, मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चैलेंज चैलेंज फील नहीं होगा अगर हमने अपने आप को क्या कर लिया, पावरफुल। टीचर बोल सकता है अगले महीने का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कितना डिफिकल्ट है वो डिसाइड होगा कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई की है। जिस बच्चे ने ज्यादा पढ़ाई कर ली उसके लिए वो एग्जाम कैसा होगा? आसान। लेकिन टीचर ने तो बोला था कि डिफिकल्ट है, लेकिन पढ़ाई अच्छी कर ली तो वो डिफिकल्ट एग्जाम भी कैसा लगेगा? आसान। लेकिन जब हम जाके इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, ये होगा ये होगा ये होगा, हम पहले ही अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर रहे हैं। आप घर बनाते हैं नया, तो आप ये थोड़ी पता करने जाते हैं अगले 10 साल में अर्थक्वेक आएगा क्या, 20 साल में सुनामी आएगा क्या, पूछने थोड़ी जाते हैं। हम सिर्फ एक स्ट्रांग फाउंडेशन का घर बनाते हैं ताकि कुछ भी हो जाए ये मकान कैसा खड़ा रहेगा? स्ट्रांग। स्ट्रांग जीवन की फाउंडेशन यहां बनाओ, आने दो जीवन में जो भी आता है, पूछने नहीं जाना है। पूछने जाएंगे ना तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन से ही शक्ति कम होने लगती है, और फिर हम हर चीज को उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू देखते हैं। थोड़ी सी भी मुश्किल सिचुएशन आएगी, हाँ हाँ उन्होंने तो बोला था ये साल तो कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, ये साल तो सब मुश्किल ही चल, हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है वो इन्फॉर्मेशन, और हम हर चीज को उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू देखना शुरू करते हैं। हम अपने बच्चों को उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू देखना शुरू करते हैं, और वो वाइब्रेशन जो हमारे से जाएगी वो अच्छी नहीं है। इसीलिए ऐसे टाइम पास के लिए बैठ के अपना हाथ दिखाना, किसी को ऐसे दिखाना, आजकल तो ऑनलाइन किसी को दिखाने की भी जरूरत नहीं है, एंड इट्स वेरी रिस्की, ये बहुत रिस्की है। अभी तो अपने आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अपनी डेस्टिनी पता करने के लिए, तो और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती जाएगी। इसीलिए जन्म पत्री दिखाती है क्या आने वाला है, और मेडिटेशन सिखाती है कि उसको फेस कैसे करना है। अगर हम जन्म पत्री में सारी बातें राइट नहीं निकलती हैं, कुछ बातें राइट निकलती हैं कुछ नहीं निकलती हैं, क्यों? जहां आपने नई वाली बॉल चेंज कर ली ना, आपको वो वाली पॉइंट राइट नहीं लगेगी, क्योंकि वो बोलेंगे बहुत भारी है, लेकिन आपने अपने संस्कार बदल लिए, आप कहेंगे नहीं मेरा तो साल ये भारी नहीं था, ये तो सब अच्छा ही गया था, क्योंकि वो संस्कार आपने अभी बदले। वो जन्म पत्री कब बनी थी? वो जन्म पत्री कब बनी थी? वो जन्म पत्री किसकी जन्म पत्री है? तो मैं आत्मा अभी शरीर छोड़ूंगी ना, तो वो मेरे इस कॉस्ट्यूम में किए हुए कर्म की जन्म पत्री है। अभी तो वो बच्चे का तो नाम भी नहीं पड़ा, अभी तो उसने कोई कर्म भी नहीं किया, तो वो मेरा इस जीवन का क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो हमारी डेथ मतलब हमारा 31 मार्च, क्लोजिंग बैलेंस शीट, लास्ट सेकंड तक जो थॉट क्रिएट हो गया उसकी ट्रांजैक्शन उसमें चली गई, अब वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो इस बॉडी में मेरा लास्ट क्षण मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट है, फिर मैं आत्मा मां के गर्भ में जाती हूं, बच्चा पैदा होता है, और वो हो गई हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट तो हमेशा सेम होती है, हमेशा सेम होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेकर आए बिजनेस अगले साल वैसा चलेगा, ऐसा होता है? अगर सपोज मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लॉस है तो मेरा अगला साल भी लॉस होगा, बता दो, बिजनेस तो आप करते हो, अगला साल भी लॉस होगा? नहीं। और अगर मेरे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रॉफिट है, तो जरूरी है मेरा अगला साल प्रॉफिट होगा? नहीं। अगला साल किस पे डिपेंडेंट है? अगले साल में बिजनेस कैसे करते हैं वो। तो अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट को रेफरेंस मैनुअल की तरह पूरी जीवन यूज नहीं करना है, वो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट थी सिर्फ। बाकी सारा किस पे डिपेंडेंट है? इस जीवन में बिजनेस कैसे कर रहे हैं, अपने कर्मों का खाता कैसे कर रहे हैं। तो ज्यादा अटेंशन किस पर रखना है, किस पे रखना है? अपने कर्म। अब ले आओ कोई भी बात सामने से जो उतनी अच्छी नहीं है, चाहे वो सेहत है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे वो काम कारोबार में कोई बात है। याद रखें, कभी ना कभी मैंने ये बॉल फेंकी थी, इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है, इसमें किसकी जिम्मेवारी है? पूरी मेरी। तो हमेशा याद रखो, ये मेरा पास्ट कर्म है। आधा दर्द तो वहीं खत्म हो जाता है और आधे वेस्ट थॉट्स वहीं खत्म। किसने किया, क्यों किया, उसकी गलती, उसका ये, मेरा ये रिश्ता, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा ये कुछ नहीं, आत्मा है, अभी वो बेटे बहू के रोल में आए हैं। ठीक है, कोई अगर आपको तंग कर रहा है तो पहली बार नहीं मिले आप उसको, पिछली बार कुछ करके आए होंगे, गड़बड़ तो करके ही आएंगे। और जो अच्छे मिले उनके साथ भी अच्छा करके आए हैं, इसलिए आज वो अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ मेरा किया हुआ है, इसलिए लोग कहते हैं ये मेरा किया हुआ ही मेरे सामने वापस आ रहा है। लेकिन उसमें सफर नहीं करना है, अब उसको चेंज करना है। तो सामने से उनको देखो, किसी रिश्ते में बहुत बड़ी गांठ है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई हमारे साथ गलत कर रहा है, कोई हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहा है, तो भी हमें याद रखना है एनर्जी ऐसे आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, मेरा कर्म वापस आ रहा है। अब हम कौन सी एनर्जी से इस कार्मिक अकाउंट को ठीक कर सकते हैं? कौन सी एनर्जी से हम इस कार्मिक, यहां से अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है, अभी तक तो हम लग रहे थे इसकी गलती, ये मेरे साथ गलत कर रहा है, फिर ऊपर से वो कोई ना कोई रिश्ता था या कोई बिजनेस पार्टनर था या कोई ऐसा था, वो व्यक्ति ही गलत है, ऐसा सोचेंगे तो नई बॉल भी कैसी चली गई? नई बॉल भी गलत चली गई। हम दोनों का पास्ट का ये कार्मिक अकाउंट है, फुल स्टॉप। अब क्या करना है? अब कौन सी बॉल फेंकनी है? अब कौन सी बॉल फेंकनी है? वहां से तो अच्छी नहीं आ रही है, अब कौन सी बॉल फेंकनी है? अब कौन सी बॉल फेंकनी है? कितनी ऊपर वाली भेजनी है बताएं, कौन सी वाली बॉल फेंकनी है? पहले तो उन लोगों को सिलेक्ट कर लो जो अच्छा काम नहीं कर रहे आपके साथ। अच्छा काम मतलब तंग कर रहे हैं, व्यवहार नहीं अच्छा कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स डाल रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, सबको सामने ले आओ। सबको, किस किस के पास एक है कोई ऐसा, उठा लो हाथ। अच्छा, बताना थोड़ी, हमने थोड़ी पूछना है कौन है वो, है। अब उनको सामने लेकर आओ, सामने लेकर आओ। ये रिश्ते को नहीं देखना, शरीर को भी नहीं देखना, ये किसके और किसके बीच का कार्मिक अकाउंट है? मुझ आत्मा और इस आत्मा के बीच का कार्मिक अकाउंट है। जब हम पिछली बार मिले थे हम इस रिश्ते में नहीं थे, कोई और रिश्ता था तब। शादी हुई थी तो पंडित जी ने क्या 7 जन्म कट्ठे कट्ठे, अभी भी कहते हैं, जबकि आजकल लोग 1 जन्म भी कट्ठे नहीं रह रहे, पंडित जी फिर भी कहता है 7 जन्म कट्ठे कट्ठे। क्यों? क्योंकि उसका मीनिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि 7 जन्म पति पत्नी बनते रहेंगे, इसका मीनिंग है कि जो इस कार्मिक अकाउंट में आता है, हस्बैंड वाइफ एक बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप, सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप कट्ठे रहने का होता है, तो वो बहुत स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट है। तो जो इतने स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट में आएगा वो पहली बार नहीं मिल रहा है, वो पहले भी मिले थे, अभी मिल रहे हैं और फिर से मिलेंगे। इसी तरह बाकी भी जो आपके क्लोज रिश्ते हैं, चलो इकट्ठे मिलके बोलते हैं, हम पहले भी इकट्ठे थे, अभी भी इकट्ठे हैं, इसलिए आप डिवोर्स भी ले लो तो भी फिर से मिलना आप रहे, इससे अच्छा अभी ठीक कर लेना चाहिए उसको, अभी ठीक कर लेना चाहिए। आजकल छोटी छोटी बात में, हाँ, वी कांट गेट अलोंग, वी कांट स्टे विद ईच अदर, कार्मिक अकाउंट सॉर्ट आउट नहीं होगा ऐसे। नहीं होगा ऐसे। तो जिनके साथ भी मेरा स्ट्रांग वाला कार्मिक अकाउंट है वो मेरे नजदीक के रिश्ते में आएंगे, जिनके साथ स्ट्रांग अच्छा कार्मिक अकाउंट है वो भी नजदीक आएंगे, जिनके साथ स्ट्रांग दूसरा टफ वाला है वो भी नजदीक ही आएंगे। इसलिए वो हमारा बच्चा बनकर आएंगे, वो हमारे भाई बहन बनकर आएंगे, वो हमारे स्पाउस बनकर आएंगे। अब हम उनको रिश्ते के लेबल के थ्रू देखते हैं और कहते हैं बेटा होके ऐसे करता है, भाई होकर ऐसे करता है। याद रखना जिसके साथ भी कार्मिक अकाउंट है उसको नजदीक ही आना है, वो पड़ोसी बन के नहीं आएगा। कहां आएगा? नजदीक आएगा, क्योंकि स्ट्रांग कार्मिक अकाउंट है। तो रिश्ते को देख के दर्द में नहीं जाना है, मेरा बच्चा होकर मुझसे ऐसे बात की। रिश्ते को देख के दर्द में जाएंगे तो और गलत कर्म हो जाएगा। अभी फिर से आत्मा है, मैं आत्मा हूं, हम पहले मिल चुके हैं और पिछली बार कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, नो प्रॉब्लम। सारी पावर कब है? सारी पावर कब है? अब। तो अब मेरी तरफ से उस आत्मा को जो आज आपका बच्चा है, शायद कभी वो आपका बड़ा भी था रिश्ते में, हो सकता कि नहीं हो सकता। जो आपका बिजनेस पार्टनर है, हो सकता है वो आपका बच्चा था कभी। हमें तो पता ही नहीं हम आपस में कौन से रोल्स प्ले करके आए हुए हैं। इसलिए आप देखो कभी कभी किसी के साथ एक बहुत स्ट्रांग कनेक्ट फील होता है जबकि उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है एज सच, और किसी के साथ रिश्ता है लेकिन कनेक्ट नहीं फील होता, कनेक्ट नहीं फील होता। तो इट हैज लॉट्स टू विद हमारा पास्ट एनर्जी कैरी फॉरवर्ड क्या है। अभी जब वापस जाओगे ना सबको उस नजरिए से देखना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं। ये बहू ये सब लेबल से नहीं देखना, वो तो रिश्ता है। ये आत्मा मुझ आत्मा का पास्ट में भी रिश्ता था, अभी भी हम दोनों का रिश्ता है, फिर से हम मिलेंगे। तो अब कुछ भी चेंज करना है तो किसने चेंज करना है? रिश्ते के लेबल से थ्रू देखते हैं ना, तो वो बेटा है उसको चेंज करना होगा, वो बहू है उसको ठीक करना होगा। आत्मा आत्मा में पहले कौन करेगा? आत्मा आत्मा में पहले कौन करेगा? जो करेगा वो पाएगा। जिसने अच्छी वाली बॉल पहले फेंक दी उसका कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। तो इसीलिए रिश्ता कोई भी हो, अच्छा बनने के लिए अगर थोड़ा झुकना पड़े, वो बात नहीं कर रहे हम बात करेंगे प्यार से, वो सुबह सुबह मिलके नहीं गए हम फोन करके पूछेंगे क्या हो गया, आप जल्दी में थे आज, आप सुबह सुबह चले गए, सब ठीक है? नहीं तो चले गए, मिलके भी नहीं गए, बात भी नहीं की, टाइम ही नहीं है इनके पास हमारे। जब से मेरे बेटे की शादी हुई अब तो वो बिल्कुल ही नहीं मिलता, बैठे बैठे सुबह सुबह 100 बॉल तो ऐसे ही फेंक देते हैं ऐसे ही। और फिर वो जो लड़की आई घर में, जब से ये आई है ना मेरा तो बेटा बदल गया, तो पहले 100 इधर फिर 200 उधर। और फिर जब वो शाम को आते हैं तो उनका तो मूड हमारे साथ अच्छा होता ही नहीं है, क्योंकि हमने सारा दिन में इतने भेजे थे कि उनको कभी नहीं पता चलता कि उनको हमसे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि हमने बहुत हैवी एनर्जी भेजी थी दिन में। इससे अच्छा ना एक फोन करके बात कर लेते, खुद भी लाइट रहते, वो भी लाइट रहते, शाम को आते तो बड़े प्यार से खाना खाते इकट्ठे। ये तो एक दिन का कार्मिक अकाउंट है सिर्फ, ऐसे एक जीवन के कितने कार्मिक अकाउंट होते हैं। तो ईगो में नहीं जाना है, हम बड़े वो छोटे, आत्मा आत्मा में ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, इक्वल है कार्मिक अकाउंट सब। हाँ कल हमने देखा रिगार्ड वही रहेगा, जो बड़ा है छोटे आके उनके आगे झुकेंगे। फिजिकली झुकने में छोटे झुके, इंटरनली झुकने में कोई भी झुक सकता है, कोई भी झुक सकता है, उसमें छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। रिगार्ड अलग, रिस्पेक्ट अलग। तो रिगार्ड बाह्य रोल के लिए होगा, रिस्पेक्ट हर आत्मा के लिए होगी। तो हमने कैसी वाली बॉल भेजनी है? तो इसको हम व्हाइट बॉल, प्योर बॉल, डिवाइन बॉल, फिगर कोई भी अपने यहां पे, सामने से कुछ भी आ जाए, मेरे पास स्टॉक सिर्फ कौन सी वाली तरह की बॉल्स का है? प्योर बॉल, पावरफुल बॉल, ब्लेसिंग वाली बॉल, दुआएं वाली बॉल। अब मेरे से गलती से भी नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, सामने कोई भी हो और सामने कोई भी कुछ भी कर रहा हो, यहां से आपको ब्लेसिंग ही भेजनी है। इवन अगर ऐसा कोई कार्मिक अकाउंट है जिसमें हम लीगल केस लड़ रहे हैं, कार्मिक अकाउंट सॉर्ट करना मतलब ये नहीं कि कोई आके मेरे साथ गलत करके चला जाए, दैट इज नॉट द वे। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है आप उसके साथ कोर्ट में जा रहे हैं, आप कोर्ट में केस लड़े, लेकिन यहां से नफरत नहीं करेंगे, यहां से नफरत नहीं करेंगे, यहां से फिर भी ब्लेसिंग ही भेजेंगे ताकि उस आत्मा और मुझ आत्मा के जो कर्मों की गांठें हैं वो गांठें क्या हो जानी चाहिए, ताकि अभी भी लाइट और फिर मिलेंगे तो भी लाइट। हमारे पास सेंटर पर एक परिवार आया, उनका 10 साल का बच्चा किडनैप हो गया था और वो सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, कहां उसको लेके गए थे और वो सब सब। फिर वो बच्चा नहीं सर्वाइव नहीं किया, उन लोगों ने बहुत गलत किया उस बच्चे के साथ। तो फिर उनको, क्योंकि वो सीसीटीवी में था, वो व्यक्ति पकड़ा गया इमिजिएटली, उनकी जान पहचान का ही व्यक्ति था, लेकिन अब इनको कोर्ट में जाना पड़ रहा था बार बार और सामने उस व्यक्ति को देख रहे हैं। तो वो जब सेंटर पर आए, एक तो बच्चे खोने का दर्द वो ही इतना है, लेकिन वो वाइफ कहते मेरे को हर बार उस व्यक्ति को देखना पड़ता है सामने, उसको देखकर मुझे वो सब कुछ याद आता है, तो बहुत तंग होता है। तो फिर हम थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहे थे, फिर सडनली वो पूछती है ये क्यों हुआ हमारे साथ। मैं कभी इस बात को छोड़ देते हैं कि क्यों हुआ, अभी हम सिर्फ योग करते हैं क्योंकि अभी वो बातों में नहीं जा। कहती नहीं नहीं ये क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा कैसे हुआ मेरे बच्चे के साथ ऐसा, खुद ही खुद से बात करती गई। फिर उसको आंसर तो पता चल गया था कोर्स करते हुए, तो फिर कहा ये हमारा कार्मिक अकाउंट है। मैंने कहा अभी छोड़ देते, अभी नहीं ये बात करेंगे, नहीं ये हमारा कार्मिक अकाउंट है। मैंने कहा हर चीज हमारा कार्मिक अकाउंट है, लाइफ में जो हो रहा है हर चीज हमारा कार्मिक अकाउंट है। तो वो इतनी स्वीट सोल कहती है मेरे को जल्दी बताओ इस कार्मिक अकाउंट को चेंज कैसे करना है। मैंने कहा आपको इससे मिलना है वापस फिर कभी, कहती इसको अभी मुझे फिर से कभी नहीं मिलना है। कुछ कार्मिक अकाउंट होते हैं जिनको हमें क्लोज करना है, बाकी सारे कार्मिक अकाउंट होते हैं हमें चेंज करना है, हमें नेगेटिव से उसको क्या करना है पॉजिटिव में करना है, हमें गलत से उसको अच्छे में करना है। लेकिन कुछ ऐसे बहुत ऐसे वाले होते हैं जहां कुछ बहुत डीप रॉन्ग होता है, तो कहा मुझे उसको फिर से नहीं मिलना। अब अगर उसको फिर से नहीं मिलना है तो यहां पर क्या होना पड़ेगा, फिर उस आत्मा के प्रति क्या होना पड़ेगा? अगर हम नफरत किसी से करेंगे तो फिर हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो हमें उस नफरत को खत्म करना पड़ता है और हमें एक ऐसी स्थिति पे आना पड़ता है कि मेरे मन चित्त पर वो आत्मा नहीं आनी चाहिए। अभी जब आपके मन पर किसी के प्रति एक भी स्वप्न में भी सोच न चले, मतलब आपका और उनका कार्मिक अकाउंट क्लोजर हो गया। वो आपको याद स्वप्न में भी नहीं आते और वो भी आपको याद नहीं करते, इसलिए आपको वो थॉट नहीं आती है, तो उसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट क्लोज हो गया। तो वो बहन बोलती है हाँ मुझको करना है, इसके साथ क्लोज करना है, मुझे इसको फिर से नहीं मिलना। तो मैं तो पर उसको ये पता था कि कुछ तो पास्ट था तभी हुआ। तो फिर कहा कि हम ही तो कुछ करके आए होंगे। मैं कहा पता ही है ना, अभी तो हम ही कुछ करके आए। तो कहते अभी क्या करना है? तो मैं कहा पहले जो हम, क्योंकि हम यही सीखते हैं यहाँ पे, कि हम किसी के साथ कुछ गलत करके आए होते हैं तभी उस आत्मा से हमारे पास कोई ना कोई विघ्न आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई दर्द आ रहा है। कुछ भी मेरे पास अगर अनकंफर्टेबल किसी से आ रहा है तो मेरी तरफ से अनकंफर्टेबल गया था। तो सबसे पहले मेडिटेशन में, सामने जाके बोल के नहीं, मेडिटेशन में बाबा के सामने बैठकर पूर्व में जो कर्म किया था ना उसके, उस आत्मा से माफी मांगे, क्षमा मांगे उस आत्मा से जो हमारे साथ आज गलत कर रहे हैं। हमने कभी ना कभी कुछ गलत किया था तो सबसे पहले उनसे पुराने घाव जो हमने उनको दिए थे उसकी क्षमा मांगे, फिर वो अभी जो कर रहे हैं हमारे साथ उसके लिए उनको क्षमा करें और फिर कहें कि पास्ट कार्मिक अकाउंट खत्म, आज से मेरी तरफ से आपको सिर्फ दुआएं दुआएं और दुआएं। तो ये क्या होने लग जाएगा, बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल क्लीन। हमारे अंदर से किसी के प्रति जो नफरत या दर्द या धोखा या चोट जो लगी होती है उसको हमें ठीक करना होगा, क्योंकि वो हमारे अभी के भाग्य पे भी अफेक्ट कर रही है। और फिर मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, वो रिकॉर्डिंग मेरे साथ जाएगी, हम फिर मिलेंगे और जब फिर मिलेंगे हम पहचानेंगे भी नहीं एक दूसरे को, लेकिन वो स्टोरी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। इसलिए हम क्षमा किसको कर रहे हैं? हम कहते हैं ना मैं उनको नहीं क्षमा कर सकता, पर उनको क्षमा करने का कॉन्सेप्ट ही क्या है? जब मैंने कहा मैं उनको क्षमा कर रही हूं तो एक्चुअली मैं किसके भाग्य को चेंज कर रही हूं? अपने। उस आत्मा ने जो कर्म किया है वो उसका बॉल तो उसके पास वापस आना ही है, चाहे पूरी दुनिया क्षमा कर दे उसको। इवन अगर लॉ ऑफ कंट्री किसी को छोड़ दे, पूरी दुनिया क्षमा कर दे, तो भी लॉ ऑफ कर्म उसका बॉल उसके पास वापस आना ही है, वो नहीं कहीं चेंज हो सकता है। परमात्मा कहते हैं मैं भी किसी के कार्मिक अकाउंट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो फिर हमने क्षमा किया तो किसके भाग्य को बदला? हाँ, तो ये जो हमें मुश्किल लगता है ना क्षमा करना, क्योंकि हमें लगता है हम उनको कैसे क्षमा करें जिन्होंने इतना गलत किया है, हम उनको तो कर ही नहीं रहे। जब हम कहते हैं हम उनको क्षमा करते हैं, मतलब हम अपने अंदर के दर्द को क्या कर रहे हैं, अपने अंदर की चोट को क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, हम खुद को फॉरगिव कर रहे हैं। लेकिन फिर सिर्फ क्षमा करने से कार्मिक अकाउंट नहीं ठीक होगा, उनको रोज ब्लेसिंग्स दो। कल हमने देखा ना, जिस चीज की सामने वाले में कमी है उसको वो दो। जब आपसे वो एनर्जी जाती जाएगी, सबसे पहले आप कैसे बनते जाएंगे? देने वाले। अभी हम क्या बन रहे थे? उनका दर्द लेने वाले। उन्होंने गलत किया, हमने उनके कर्मों से दर्द लिया। हमें दर्द लेना नहीं है, हमें दुआ देनी है। तो हमारा पास्ट कार्मिक अकाउंट भी सेटल हो जाएगा और हमारा नया कर्मा कैसे होगा? अब हम जब भी फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे पे मिलेंगे, क्योंकि मेरी तरफ से मेरी बैलेंस शीट में वो ट्रांजैक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई है। करें फॉरगिव लोगों को, गांठों को खोलें। पता नहीं है घर तक पहुंचते हैं या रास्ते में कुछ हो जाता है, तो कब जाके करना है? कब जाके करना है? अभी। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करना है। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आया, किसी ने बनाया, तो बहुत पावरफुल है वो वीडियो। एक परिवार में उनके पांच, ये विदेश का है, पांच बच्चे थे, उसमें से तीन बच्चे ऐसे कहीं वॉक करते हुए जा रहे थे और दो बच्चे, मतलब टोटल पांच बच्चे इकट्ठे, उसमें से तीन बच्चे एक ही फैमिली के थे। वो पांच बच्चे ऐसे वॉक पेवमेंट पे वॉक करते हुए जा रहे थे, एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, वो बहुत स्ट्रांग अल्कोहल और ड्रग के इन्फ्लुएंस में वो गाड़ी चला रहा था, वो सारे बच्चों के अंदर ऐसे कर गया और वो सारे तीनों बच्चे उनके उसी टाइम ऑन द स्पॉट। और वो पूरी जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है वो ये है, वो डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया है कि वो पेरेंट जिसके वो तीन बच्चे, और बच्चे छोटे छोटे थे ऐसे, तीन बच्चे जो अचानक एक सेकेंड में गए, उन्होंने उस व्यक्ति, वो व्यक्ति तो जेल में ही है, लेकिन उन्होंने कहा है हम उसको क्षमा करते हैं। तो फिर वो डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने क्या किया, उस फादर को जेल में लेके गए उस व्यक्ति से मिलाने के लिए, और वो मीटिंग जो उनकी है उसके बारे में वो डॉक्यूमेंट्री बनी है। इतनी पावरफुल है कि हमें ह्यूमन इमोशन की पावर समझ में आती है। तो वो जो फादर है वो जा रहा है, रास्ते में उससे कोई पूछता है कि आपने क्यों क्षमा किया, मतलब आप क्षमा कैसे कर सकते हो किसी को जिसने आपके तीन बच्चों, कहते मेरे पास पहले ही बहुत दर्द है अपने तीन बच्चों को खोने का, मैं उसके प्रति नफरत पकड़ के अपने अंदर का दर्द नहीं बढ़ा सकता हूं, वो नफरत का दर्द मुझे नहीं चाहिए। फिर उसको वहां पे जब वो मिलते हैं तो उसको हैंडशेक करता है, गले मिलता है ऐसा, तो फिर वो आया, ये कार्मिक अकाउंट चेंज हो गया वो दो आत्माओं का। बहुत भारी कार्मिक अकाउंट में आए थे, लेकिन वो दोनों आत्माओं ने जो ये चेंज किया उनका कार्मिक अकाउंट चेंज हो गया, क्योंकि उन्होंने अभी ही अपने अंदर से वो जो एनर्जी ब्लॉकेज है उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये हरेक के पास शक्ति है, हम जितनी भी बड़ी बात हुई हो हमारे पास शक्ति है उसको फिनिश करने के, हमारे पास शक्ति है फॉरगिव करने के। लॉ ऑफ कर्म फिर भी सामने वाले के साथ आएगा, हमें अपने कार्मिक अकाउंट को क्या करना है, रिलीज। रेडी करने के लिए चलो सीधा होकर बैठे। अपने आप को देखें, मैं आत्मा इतनी लंबी जर्नी पर अनेक कॉस्ट्यूम लिए, हर कॉस्ट्यूम में इतने सारे रिश्ते, कितने सारे आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट बने, आज वो मेरे आसपास हैं सभी, हम उनको पहचानते नहीं हैं, कि हम पहले किस रूप में मिले थे, लेकिन मिले थे, आज भी मिल रहे हैं। मेजॉरिटी कार्मिक अकाउंट बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनको अपनी हर सोच से और स्ट्रांग बनाना है। कोई भी बात हो जाए, मेरा हर संकल्प उस आत्मा के लिए शुद्ध है, मेरा कर्म श्रेष्ठ है। मैं सबको देने वाली आत्मा हूं। अब उस एक आत्मा को सामने लेकर आए जिसके रिश्ते को हमें थोड़ा और बेटर करना है। बहुत अच्छा है, लेकिन और बेटर करना है। कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ कुछ बातें, वो फैमिली में हो सकता है, वो रिश्तेदारों में हो सकता है, वो बिजनेस में भी हो सकता है। है तो मेरा कार्मिक अकाउंट, लेकर आए उनको सामने। अब उनको एक रिश्ते के रूप में नहीं, चेहरा भी नहीं, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा लाइट, वो आत्मा लाइट, हम इकट्ठे, हम पहले मिल चुके हैं। अब उनसे कहें, पास्ट इज पास्ट, मैंने जो आपके साथ कभी किया था उसके लिए मैं आत्मा क्षमा मांगती हूं। आप अभी जो कर रहे हैं उसके लिए आपको क्षमा करती हूं। मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं हैं, सिर्फ और सिर्फ दुआएं हैं। आज से मेरी हर सोच आपके लिए एक ब्लेसिंग है। पास्ट खत्म हुआ, आज से एक नया कार्मिक अकाउंट स्टार्ट करते हैं। आज हम साइलेंस में नाश्ते पर चलेंगे और वॉक करते हुए और नाश्ता करते हुए अपने भाग्य को चेक कर लेंगे। जिस भी चीज में चेंज लाना है, चाहे बिजनेस में, चाहे बॉडी की हेल्थ में, चाहे रिश्ते में, किसी भी चीज में जो चेंज लाना है, वो मुझे नई बॉल फेंकनी है। सोच को बदलना पड़ेगा। पुरानी सोच मतलब पुरानी बॉल। तो जो हम चाहते हैं कि हो, हमें उसको अपनी नई बॉल बनाना है। अगर शरीर में बीमारी आ रही है बार बार, तो हमारी नई बॉल होगी, मेरा शरीर परफेक्ट है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर रिश्ते में गांठे बन रहे हैं, तो मेरी नई बॉल होगी, ये रिश्ता परफेक्ट है, हमारी आपस में बहुत बनती है, और दुआओं की बॉल। अगर बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमारी नई बॉल होगी, बिजनेस परफेक्ट है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, मेरी क्षमता से ज्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं। और जो आपको टारगेट रखना है, आपको वो संकल्प करना है कि हम अचीव कर चुके हैं। नई बॉल मतलब ये नहीं करेंगे, नई बॉल मतलब कर चुके हैं। तो जो बॉल भेजेंगे वही बॉल वापस आएगी। कल किस किस ने डिनर मौन में किया था? अच्छा लगा साइलेंस में करके था? तो अब हम फिर से साइलेंस में ही वॉक करेंगे। आज हम अपने कार्मिक अकाउंट्स को चेक करते हुए चलेंगे। कि कौन से कार्मिक अकाउंट को थोड़ा सा और ऊपर उठाना है, उसकी सोच आज डिसाइड करके जाएंगे। यहां से इस वायुमंडल में करना है सब कुछ। तो वॉक करते हुए साइलेंस में, नाश्ते पे साइलेंस में अनाउंसमेंट, एक मिनट रुककर अनाउंसमेंट सुनकर जाएंगे, बिल्कुल मौन में चलेंगे। कोई आपसे बात भी करेगा ना, आप मौन में रहना, उसको याद आ जाएगा हमारा मौन है।
ओम शांति।